इसी महीने की रिसेंट अव्यक्तवाणी चल रही थी 23/7/2017। ये वाणी सभा में नहीं सुनाई गई थी, कोई को पर्सनली सुनाई गई। जिसका नाम बाबा ने अंतिम संदेश दिया है, और जिसमें बताया कि अभी थोड़े समय के बाद साइंस के सब साधन समाप्त होने वाले हैं, इसलिए जो बच्चे यज्ञ में रहकर यज्ञ में ही रहकर गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं, उनका क्या होगा? ये संदेश सबके पास पहुंचना चाहिए। ऊपर ऊंची स्टेज में जाकर बाबा फिर ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था, कितना अच्छा था, ये भी नहीं समझना कि 20 साल पड़े हैं, 100 साल का संगम युग है, 20 साल तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो 20 साल बचे हैं वो तो दुनिया वालों के लिए बचे हैं। सब कुछ अचानक होने वाला है, और खास बात ये कि बाबा याद दिलाना चाहते हैं ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, कौन सा शरीर? गुलजार दादी का नहीं, सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अभी दूसरी बच्ची का जो शरीर है बहुत नाजुक है। कौन सी बच्ची का शरीर बहुत नाजुक है? है? हाँ जी, इस बच्चे का शरीर यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो बाबा बोल रहे हैं सभी तरफ ये आवाज जानी चाहिए, इस बात में अगर संशय आया तो फिर ये भी नहीं सोचना है कि अभी बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया था, फिर दूसरी बच्ची का तन लिया, किसका? ब्रह्मा बाबा की बात, दूसरी बच्ची का तन लिया, अब किसका तन लिया? बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है, इसी बोला ना ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, सिर्फ आवाज जानी चाहिए। ये तन किसी के सामने नहीं आना चाहिए, जहां तक आवाज पहुंचा सकते हैं इस तन की वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी पहुंचेगी ना, हाँ, क्योंकि आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है, लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान ज्यादा चल गया है। खुद को बाप से भी बड़ा ज्ञानी समझने लगे हैं। खुद बाप बन के बैठ गए। उनका आईडी प्रूफ भी दिया उन खास बच्चों का, किसी को 20 साल हुए, बाप के भी बाप बनकर बैठे, विरोधी बनकर बैठे हैं, 20 साल हुए, कोई को 30 साल हुए, बाप के भी बाप बनकर बैठे, कोई को 40 साल हुए, तो वो समझते हैं अपन को कि हम बाप के भी बाप बन गए। ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप ही है, जो भी आप बने हो, चाहे दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन क्रिश्चियंस के भी सार रूप में बाप, चाहे बौद्धियों के भी सार रूप में बाप, चाहे इस्लामियों के बाप, जो भी आप बने हो वो बाप की वजह से बने हो, बाप ने ही तुम्हारा नंबर डिक्लेयर किया था, कि किस धर्म के कौन बीज हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बाप तो बाप है, ये सारी बातें बच्ची को जहां जहां मेन मेन जाना चाहते हैं, जो भी है जिस सेंटर पर भी, और जो अभी नया अभियान निकला है जो पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है, इस अभियान का है, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगने हैं, लगते हैं। तो 40 वर्ष किसके लिए बोले है? अरे जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए 40 वर्ष बोले। वो बाप सभी मनुष्य आत्माओं के बीच परम पाठधारी हीरो पाठधारी है। दुनिया के सामने इसी अभियान की प्रत्यक्षता होनी है। कितनी दुनिया के सामने है? 500-700 करोड़ दुनिया के सामने इसी परमात्मा बांब के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होनी है। और बांब कौन छोड़ते हैं? बांब किन के द्वारा छोड़ा जाता है? आस्तिकों के द्वारा या नास्तिकों के द्वारा? जो दुनियावी नास्तिक है, वो स्थूल बांब छोड़ते हैं, इसकी बदबू से सब खलास हो जाता है। सब मृत्यु के घाट पहुंच जाते हैं, है ना? अरे चतुर्थ विश्व युद्ध होगा तो सब मारे जाएंगे। शरीर मरता है या आत्मा? कोई बचेगा है? कोई नहीं बचेगा। फिर नई सृष्टि कहां से आएगी? पहला पत्ता कहां से आएगा? कौन है पहला पत्ता? है कृष्ण बच्चा। तो पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है, ये जो अभी नया अभियान बताया। क्या बताया? परमात्मा प्रत्यक्षता बम, जो सभी युवाएं मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। कौन? युवाएं। युवाओं में अधर कुमार होते हैं ज्यादा, अधर कुमारियां होती हैं, कुमारियां होती हैं या कुमार होते हैं? कुमार होते हैं। वो क्यों फोड़ेंगे प्रत्यक्षता बम? बदबू वाला गिलानी का अरे इस अंतिम समय में उनका ऐसा पाठ क्यों? कारण का पता नहीं, सबसे ज्यादा काम विकार की आग किसको लगती है? युवाओं को, बूढ़ों को, अधर कुमारों को, अधर कुमारियों को या कन्याओं को? अरे बोलो बोलो, कुमारों को। जो कहते भी हैं दुनिया वाले कि युगलों की जिनमें पुरुषों की खास, भले बाबा ने उनको भी दुर्योधन दुशासन तो बताया, फिर भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे नंबरवार? तो युगलों की 9999 चिंताएं और कुमारों की एक चिंता एक पलड़े पर रख दो, और युगल मूर्त की 999 चिंताएं तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो, तो कौन भारी पड़ेगा? कुमार भारी पड़ जाएगा। इतनी आग लगी रहती है, फिर अगर आग पूरी न हो तो रिजल्ट क्या आता है? कामेश क्रोधेश हो जाते हैं। तो सभी युवाएं मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, ये एक लास्ट संदेश होगा। बाप की प्रत्यक्षता का सारी दुनिया 500-700 करोड़ के बीच लास्ट संदेश क्या? सारी दुनिया के बीच क्यों? अरे सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मुक्ति, जीवन मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा वर्षा बाप के बिगार कोई और देगा क्या? तो बाप को पहचानेंगे तब वर्षा मिलेगा कि बिना पहचाने वर्षा मिलेगा? जो ब्रह्मा मुख से मुरली में भी बोला, बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। बाप सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो बाप कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलती हैं। कोई को सभी इंद्रियों के द्वारा क्लोज कांटेक्ट में आके मिलते हैं, कोई को कोई कोई इंद्रियों से मिलते हैं, कोई कान से टेप रिकॉर्डर में, वीसीडी में, टीवी में आवाज सुनेंगे, कौन सी इंद्रिय से? कान से। कोई अखबारों में, टीवी में फोटो देखेंगे, आकर्षित हो जाएंगे। जो तुम बच्चों को बताया भी है, क्या बताया हम बच्चों को? जो देखे इन आंखों से और जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी बड़े लंबे चौड़ा व्याख्यान की बात नहीं जो 80 साल से देते चले आ रहे। कानों से दो शब्द भी सुनेंगे बाप के द्वारा तो पहचान जाएंगे। इसलिए ये लास्ट संदेश है सारी दुनिया के लिए। कौन सा? बाप की प्रत्यक्षता का। और ये जो प्लान बनाया है परमात्मा बांब के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता का, जिसकी बुद्धि में भी ये प्लान आया है, नाम नहीं बताया क्या, थोड़ी सी इशारा दे दिया क्या, कोई को 20 वर्ष, कोई को बाप बनकर बैठे कितने वर्ष, 30 वर्ष, कोई को 40 वर्ष। तो जिसने भी बनाया है वो उसने नहीं बनाया है, बाप ने कैच कराया है क्या है? तो बच्ची के तन में तो बाबा आकर इतना नहीं बोल सकता, खुल करके विस्तार नहीं बता सकता क्या, इतना माने कितना, जितना शास्त्रों में गायन है, चित्र बने हुए हैं, चित्रकारी की यादगार है, चरित्र की नंगा नाच, किसके चित्र बने हुए, नंगा नाच करने का कोई चित्र बने हुए हैं, किसके, शंकर के। तो इतना बच्ची के द्वारा नहीं बोल सकता बाबा, ब्रह्मा बाबा। कौन सी बच्ची के द्वारा, सुलजादारी के द्वारा, सभा में इतना नहीं बोल सकता। कन्या के मुख से नंगा ज्ञान डांस हो तो कोई को अच्छा लगेगा है? वो भी भारतीय कन्या के द्वारा। तो हलचल भी नहीं क्या, किस बात से, अरे भूलते जा रहे, नहीं वो नंगा डांस तो कल्याणकारी है, जिनकी समझ में नहीं आता, ठोस बुद्धि है, उनको खोल खोल करके समझाया जाता है। अचल रहना है इस बात पर, जो ग्लानी का प्रत्यक्षता बम्ब फटेगा युवाओं के द्वारा, तो उसमें अचल रहना है, कोई हलचल में नहीं आना है। किसके लिए बोला हा? अरे दुनिया वालों के लिए बोला कि हम बच्चों के लिए बोला, हम बच्चों के लिए बोला, जिनकी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। कौन सा ज्ञान, कि बाप आते हैं तो राजा रानी बनाने के लिए जन्म जन्मांतर के लिए नंबरवार क्या सिखाते हैं? हैं? राजयोग सिखाते हैं, जिसमें राज भरा हुआ है। बच्चा बुद्धि आत्माएं पहचाने की राज को, कृष्ण जैसी, दादा लेखराज जैसी बच्चा बुद्धि आत्माएं राज की बात को जल्दी पहचानेगी, या जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुराने थे, पुराने आए हैं 84 जन्म लेकर, वो अनुभवी आत्माएं जल्दी पहचानेगी राज की बात को। कौन सा राज? कितनी आत्माएं राजयोग सीख करके राजा रानी बनती हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ राज्य की सत्ता जरूर होती है। कितनी है? 16,000 जो शास्त्रों में गाई हुई हैं, गोप और गोपियां। ये शब्द क्यों बोला? गोप गोपियां नाम क्यों दिया है? गीता में बोला है ना, ज्ञान गुह्यम, जो राज की बात है, दुनिया वाले उस राज को नहीं समझेंगे कि गोप गोपियों ने कौन सा गुप्त संबंध जोड़ा, कौन कौन सी इंद्रियों के द्वारा जोड़ा, कब जोड़ा, कैसे जोड़ा, ये दुनिया वाले जानेंगे है? नहीं जानेंगे। जिन्होंने राजयोग सीखा है वो ही आत्माएं गहराई से जान सकती है। जिन्होंने सीखा ही नहीं है, गुह्यात गुह्य धर्म ज्ञानम। गीता में क्या बोला? कैसा ज्ञान है? है गुह्य ते गुह्य, राज देने वाला ज्ञान है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकली जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, अनुभव तो जन्म जन्मांतर जो राजा रानी बनते हैं, राजकुल में आते हैं, उस 16,000 के ईश्वरीय परिवार ने समझा। ईश्वरीय परिवार में शास्त्रों में कितनी गोप गोपियां गाई हुई हैं? 16,000 गाई हुई हैं। माला भी बनी हुई है, माला माने संगठन। राजयोग सीखने वालों का बड़े से बड़ा संगठन, कितनों की माला? 16,000 की माला, जो आज भी पुराने पुराने मंदिरों में रखी हुई है। भक्त जन जाते हैं, 4-4, 8-8, 10-10 लोग मिलकर के माला खींचते हैं। मना संगम युग में ये शूटिंग होती है, उस संगठन के मणकों को, आत्मा रूप को संगठित होकर लोग खींचते हैं ईश्वरीय ज्ञान में। और वो आत्माएं उन राज परिवार में आने वाले 16,000 मणको रूपी आत्माओं के प्रजा बनते हैं। जिसकी जो जितनी प्रजा बनेगी उसको ही तो प्रभावित करेंगे। प्रभावित माने प्रजा। अब जिसने जितनी प्रजा बनाई हो, बड़े से बड़ी माला है 16,000 की, उससे छोटी माला है ब्रह्मा की 1,000 भुजे हैं। फिर उससे छोटी माला है 108। जो राजाएं बनते हैं माने राज परिवार के सदस्य नहीं, सिर्फ क्या बनते हैं, राजाएं बनते हैं। राजाओं की तो सत्ता होती ही है सारी प्रजा के ऊपर, सारे राज्य के ऊपर। हाँ, राजा के परिवार में आने वाले जो भांति होते हैं उनका प्रभाव सारे राज्य में तो नहीं होता, होता है नहीं होता है। कोई का किसके ऊपर प्रभाव, कोई का किसके ऊपर प्रभाव। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड हो, तो उसकी भी सत्ता कुछ चलेगी या नहीं चलेगी, है चलेगी। ऐसे ही जो 16,000 ईश्वरीय परिवार है वो सारे के सारे कुछ न कुछ सत्ता लेते हैं, योग बल की ताकत लेते हैं, राज्य में कुछ को कुछ ताकत अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। जैसे दिखाते हैं राज्य तो उग्रसेन का था ना, सारा राज्य किसका था, हैं उग्रसेन का था। फिर क्या हुआ, कंस का राज्य था। अरे कंस ने लास्ट में अपनी मुट्ठी में ले रखा कि पहले उसका बाप का राज्य था, बाप का उग्रसेन का राज्य था। सारे मथुरा राज्य का राजा उग्रसेन ही था। लेकिन जो मुख्य भाती था उग्रसेन के परिवार में कौन था, कंस। उसने सारा राज्य की मुख्य मुख्य गुंडे जैसी आत्माओं को अपने मट्ठी में कर लिया। और उग्रसेन को पता भी नहीं चला। ऐसे ही धृतराष्ट्र महाभारत में कौरवों का राजा, सारे कौरव राज्य का मुखिया था कौन, धृतराष्ट्र। लेकिन बहुत सारी सत्ता किसके हाथ में आ गई थी, दुर्योधन दुशासन के हाथ में आ गई थी। तो जो परिवार के भांति होते हैं राजा नहीं होते हैं, फिर भी उनके हाथ में सत्ता हो सकती है या नहीं हो सकती है, सत्ता हो सकती है। कोई ईश्वरीय कानून के आधार पर सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और कोई आसुरी कानून के आधार पर सत्ता अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, ये बात अलग है। तो 16,000 जो राज परिवार में आने वाले हैं, राजाओं के परिवार में, वो सभी भांति कोई भी राजा के राज्य में आएंगे, भांति माने संबंधी, वो कोई भी राजा के राज्य में आवेंगे, कोई भी जन्म में आवेंगे, उनके हाथ में कुछ न कुछ सत्ता जरूर आएगी। तो ये राजाएं, ये राज्य में सत्ता लेने वाले सत्ताधीश आत्माएं राज्य के भांति राजा के संबंधी कहां तैयार हो रहे हैं? है? अभी संगम युग में तैयार हो रहे हैं। और वो राजयोग सिखाने वाला एक ही बाप है। क्या क्या कहा? राजयोग सिखाने वाला एक ही बाप है जो राज की बात सिखाता है, जिससे राज्याधीश बनते हैं, सत्ताधीश बनते हैं। बाकी दूसरे तो ऐसे ही बरगलाते हैं। क्या बरगलाते हैं? कि हम तुम्हें राजयोग सिखाएंगे, जैसे हम बताते हैं वैसे चलो। चाहे वो संगम युग में कोई भी अलग अलग पार्टियां बनाकर बैठे, जो बाबा ने ब्रह्मा मुख से मुरली में ही बता दिया, 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। क्या तुम ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा समय भी आने वाला है, कितने संगठन रूपी राजाइयां दिखाई पड़ेंगी? 8। जो गायन है संसार में, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बोलते नहीं क्या बात है? सब अनपढ़ बैठे हुए हैं क्या? यूनाइटेड माने संगठित, संगठित होकर के रहेंगे, एक बाप के बच्चे बनकर रहेंगे, एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई भ्रातृत्व हो। तो खड़े रहेंगे, जो बोला अचल रहना है, चाहे कोई भी बॉम्ब फटे, चाहे परमात्मा बॉम्ब बड़े से बड़ा फटे। क्या एक बाप के संबंध के आधार पर संगठित बने रहेंगे, आपस में भाई भाई बनकर के रहेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई बनकर के रहेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे, तो क्या होगा? यूनाइटेड वी स्टैंड, अचल रहेंगे, अटिक रहेंगे, कोई भी बड़े से बड़ा बाम बगलानी का फूटता रहे, हमारे ऊपर कोई किसी का असर होने वाला नहीं है। इसलिए बोला हलचल भी नहीं, अचल रहना है, क्योंकि अब कहां जाना है? है? अंतमते सोगते हो जाएगी। अगर अंतिम समय में आत्म की स्थिति से हिल गए तो हलचल में आ गए या चल रहे? हलचल में आ गए, अचल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो अचल अखंड आत्मा के अभिमान में रहने वाली आत्माएं हैं, वो बच्चों के लिए अंत समय का क्या गायन है, अब घर जाना है। अंत समय में सबके मन के अंदर क्या बात पक्की होनी चाहिए, अब घर जाना है। और आगे पीछे 500-700 करोड़ों को घर जाना है, यह सिर्फ हम बच्चों को जाना है, है? अब घर जाना है, लेकिन अभी किसके लिए कहा, अभी फिलहाल किसके लिए बोल रहे हैं, है? बच्चों के लिए कहा, अचल रहना है। ये बम फटे चाहे कुछ भी फटे, कोई के ग्लानी के प्रभाव में नहीं आना है। अगर प्रभावित हो गए तो जिनसे प्रभावित हो जाएंगे उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। और जो यादव हैं, विदेशी हैं, इस्लामी क्रिश्चियन हो या बौद्धी हो, जो बौद्धी इस्लामी और क्रिश्चियंस के प्रभाव में आते रहे, अहिंसा परमो धर्म और सरेंडर हो गए, वो सब यादव संप्रदाय हैं, बांब फोड़ने वाले हैं। ये आत्माएं इस सचरूपी रंगमंच पर बाद में आती हैं या पहले आती हैं? हैं? बाद में आने वाले बच्चे बच्चा बुद्धि होते हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा होते हैं, कि वयोवृद्ध होते हैं, अनुभवी हैं, युवा वर्गीय होते हैं। तो बच्चों में अभी देवान बहुत बढ़ गया है, इसलिए बताया अपने को कंट्रोल करना है। बच्चे साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि हरेक के हाथ में, हरेक के कान में क्या लगा रहता है, ये साइंस का साधन है या साइलेंस का साधन है? मोबाइल के द्वारा देखें अपने जीवन में कि हम ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं या अपनी मस्ती की जिंदगी में ज्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, कॉल करें 24 घंटे में, ये अल्पकाल के साधन जो खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी। ऐसा तो नहीं हम उनके आदि हो गए, मान लो क्लास में कोई की शिकायतें बार बार आ रही है कि ये सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और उनके मोबाइल छीन लिए जाए, 80 साल तक अभी पढ़ाई हुई, बाप ने सौम्य रूप धारण किया या प्यार के अलावा कुछ और दिया बच्चों को? है प्यार का सागर बनकर रहा। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चों के लिए, ऐसे नहीं समझे 20 साल पढ़े हैं, 20 साल तो हैं ही नहीं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए संपन्न बनने के लिए, संपन्न राजधानी में आने के लिए, जो राजधानी सुप्रीम बाप के द्वारा स्थापन होती है, उस राजधानी में आने के लिए 20 साल हैं, है 20 साल तो है ही नहीं। अरे संपन्न दुनिया की राजधानी, ईश्वरीय राजधानी बनेगी तो दुनिया की राज्यों में, दुनिया के देशों में जो विदेशियों की, विधर्मियों की राजाइयां चल रही हैं, राजधानियां बनी हुई हैं, उनसे टक्कर कब होगी? बिना लड़ाई के राजा ही मिलती है क्या? मिलती है, हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजा ही। जो जीतेंगे वो राजा ही प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा, जीतेगा तो विश्व का राज्य राज्य भाग लेगा, अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए अब ये साइंस के साधनों में फंसने का समय नहीं रहा। अब व्यासी नहीं बन जाना है, कितना साइंस के साधनों में फंस चुके हैं कि जो अपनी शक्ति क्या है, अपनी माने पराई माने, अपनी माने आत्मा की शक्ति क्या है, है? अरे आत्मिक शक्ति क्या है? अरे आत्मा की शक्ति कौन से बच्चे प्राप्त करते हैं? दुनिया में कितने बच्चे हैं जो आत्मा की शक्ति प्राप्त करके साइलेंस की पावर ले लेते हैं? बाप के घर में पहले पहले जाकर ऊंचे से ऊंची जो कुर्सियां हैं साइलेंस की पावर वाली, वो कुर्सी ले लेते हैं। अरे आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बच्चे कितने हैं? आते हैं, है 4.5 लाख बच्चे योग बल की पावर दुनिया वालों के बीच में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? साइलेंस की पावर से सारी दुनिया में जितनी भी विदेशी विधर्मी राजाइयां हैं, राजधानियां हैं, उनको ध्वस्त कर डालेंगे। कौन सी राजधानी बचेगी दुनिया में? अरे है? अरे आसुरी राजधानियां खत्म हो जाएंगी तो कौन सी राजधानी बचेगी? ईश्वर के द्वारा जो राजधानी स्थापन की जाती है वो दुनिया में बचेगी या नहीं बचेगी? या तो दुनिया के लोग उस ऊंचे से ऊंची राजधानी के सामने नतमस्तक हो जाएं, आसुरी राजधानी की सत्ता को त्याग दें, तो साइंस के साधन असुरों के द्वारा बनाए हुए हैं या ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं? है? आसुरी बुद्धि वालों के द्वारा बनाए हुए हैं या जिनकी ईश्वरीय बुद्धि है, ईश्वरीय मत पर चलने वाले हैं, उनके द्वारा बनाए हुए हैं? है? अपना स्वरूप है वो भूल गए। क्या है अपना स्वरूप? आत्मा अविनाशी, और जिसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृति पर माने दूसरा, प्रति माने रचना, जो दूसरों की रचना है, अपनी नहीं है, उसके अधीन होते जा रहे हैं। प्रकृति के पांच तत्व हैं जिनके संघात से प्रकृति बनती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये जड़ तत्व हैं या चैतन्य है? जड़ तत्वों में ताकत होती है या चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है? तो जो जड़ साधन है उनको अपना लिया है, जो अपना है आत्मा का आत्मिक शक्ति योग बल, साइलेंस की शक्ति, उसको भूल गए हैं। क्यों कहा भूल गए? इतना भूल गए हैं कि बाप इतना जोर देते हैं अमृत वेले की याद के ऊपर आत्मिक स्थिति में रहो, है? नहीं, अरे अमृत वेले के पुरुषार्थ के ऊपर जोर दिया या नहीं दिया पुरुषार्थ में? रिजल्ट क्या है? अमृत वेले में ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं एक सितारा हूँ प्रकृति के बीच में, वो सितारा कितनी देर याद रहता है? और पांच तत्वों के बने हुए साधन, पांच तत्वों के बना हुआ शरीर, पांच तत्वों के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक जो संबंधियों के शरीर हैं, चाहे गहरे से गहरे संबंधी हो, माता पिता बाल बच्चे, उनके शरीर ज्यादा याद आते हैं या उनकी आत्मा ज्योति बिंदु याद आती है? अमृत वेले जो भी 3-4 घंटे का टाइम दिया उसमें कौन सी स्थिति हावी रहती है? देवान की स्थिति हावी रहती है या आत्म की स्थिति हावी रहती है? इसलिए बोला जो प्रकृति के साधन हैं, जिसे प्रकृति कहें, वो प्रकृति अपना सब कुछ तो दिखाएगी ना? क्या सारी ताकत अपनी दिखाएगी? कौन? प्रकृति, स्वकृति नहीं। पर माने शरीर पर है या स्व है? शरीर और शरीर के 5 तत्व जिनसे ये शरीर बना है, ये भी अपना नहीं है, अंत समय में ये काम नहीं आएगा। इसलिए बोल दिया शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। क्या आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो कितना भी वयोवृद्ध शरीर हो जाए तो भी विजयी बनेंगे, सेवाधारी बनेंगे या प्रकृति के साधनों की सेवा लेते लेते प्रकृति में फंसने वाले बनेंगे? अभी देखें कि ये समय कौन सा समय? ये समय माने अरे संगम युग तो 80 साल हो गए, ये समय कौन सा समय बताया है? अमृत वेला। 80 साल से अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला चिल्लाते आए। वास्तव में अमृत वेला तो वो होता है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है, सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला होता है, तो 80 साल में सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या अब होने वाला है? तो असली अमृत वेला क्या हुआ, अब या जो बीत गया वो तब? ये समय क्या कराने वाला है ये देखें। प्रकृति अपना सब कुछ दिखाएगी। क्या प्रकृति के 2 रूप दिखाए बताए गीता में भी? एक जड़ रूप पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश और एक परा प्रकृति चैतन्य प्रकृति। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये देवता चैतन्य थे या जड़ थे? हैं? चैतन्य थे, लेकिन जड़त्व में ही बुद्धि वाले थे या चैतन्य बुद्धि वाले थे? जड़त्व में ही बुद्धि वाले। तो ये प्रकृति अपनी सारी ताकत दिखाएगी। जो परा प्रकृति का स्वरूप है चैतन्य रूप, क्या है भूल गए? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है, भूल गए? कौन सा हाथ मिला लिया? बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया है। तो बुद्ध रूपी हाथ चैतन्य आत्मा को होता है या जड़ प्रकृति के 5 तत्वों में बुद्धि होती है? तो वो चैतन्य आत्मा कौन है प्रकृति, जिसका नाम दिया प्र माने प्रकट रूप, कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना, जिसकी रचना में रचयिता ने, रचयिता साकार या निराकार, जिसकी रचना में उस प्रकृतिपति साकार ने एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी ताकत लगा दी है।
क्या
दुनिया में भी कोई परिवार बनता है, कोई भी बाप परिवार बनाता है, तो किसका आधार लेता है? है? पहली रचना क्या है? है? माता। तो जो पहली रचना है उसमें जो पिता है वो अपनी सारी ताकत उड़ेल देता है, जो भी इसमें सत्य की ताकत है, सत्य है, जिसे पुरुष कहते हैं। पुरुष में सत्य क्या है? जो सबसे बड़ी शक्ति है हर पुरुष रूपी पिता में, क्या सत्व है? है? अमोघ। तो तब जब जीवन भर कुमार ही रहा हो, फिर नंबर बार कुमार है, जिन कुमारों के लिए कहा क्या वरदान दिया? अरे कुमारों को कोई खास वरदान दिया? जो वरदान किसी को नहीं दिया है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, कुमार चाहे तो सारी दुनिया को भस्म करना चाहे तो परमात्मा बांब छोड़ करके सारी दुनिया का देवान नष्ट कर देंगे। क्या होगा? वो बांब देह को नष्ट करते हैं, और ये परमात्मा बांब क्या करेगा? है? जबरियन सबके देवान को नष्ट कर देगा। माने बाप के ऊपर निश्चय बिछाएगा, निश्चय बुद्धि का जन्म देगा या अनिश्चय की मौत देगा? पहले क्या करेगा? देवान रूपी जो मृत्यु है, देह की मृत्यु होती है ना, वो खत्म करा देगा। देह खत्म हो जाएगी, देवान खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? आत्मा रह जाएगी। बाप को पहचानेगी कि नहीं? बाप को पहचान लेगी, लेकिन इसमें नंबर वार बन जाएंगे। क्या? कैसे बन जाएंगे? नंबर वार बनेंगे। तो बताया कि प्रकृति अपना सारी ताकत दिखाएगी। कौन है प्रकृति ब्राह्मणों की दुनिया में? चैतन्य है। अरे पांच जड़ तत्वों में कौन सा तत्व है? जिस तत्व में पांचों ही तत्व समय रहते हैं, है? पृथ्वी, वो जड़ तत्व है। और चैतन्य तत्व पृथ्वी कौन है, जिसके लिए शास्त्र में गायन है? पृथ्वी से ही जन्म लेती है, धरणी से ही जन्म लेकर धरणी में ही समा जाती है। क्या नाम दिया? सीता। शीतल बुद्धि वाली है। क्या? कैसी बुद्धि है? शीतल। जैसे भारत देश में कौन सा एक प्रदेश है जो बहुत शीतल है? अरे भारत देश में कौन सा ऐसा स्थान है जो बहुत शीतल है? हिमालय। हिमालय शीतल है ना? हिम आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, वो तो जड़ है। यादगार कोई चैतन्य भी होगा या नहीं? बा शास्त्रों में हिमवान, हिमालय पुत्री पार्वती, कौन गाई हुई है? हिमालय पुत्री पार्वती, और तुम सब नंबर वार पार्वतियां हो। तो दूसरे नंबर की पार्वती भी कोई होगी या नहीं होगी? हैं? जो मुरली में बोला राधा भी निकली तो सीता भी निकली। ऐसे ठंडे दिमाग वाले कि बर्फ हिमालय पर दौड़ती है नदियों की तरह या जाम रहती है? ऐसे बुद्धि जाम रहती है। हिमालय किसका पार्ट है ब्राह्मणों की दुनिया में? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान जल है वो चलायमान नहीं होता, बर्फ की तरह स्थिर रहता है। और वो ही ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली जब बनता है तो उसके मस्तक पर प्रवेश हो जाता है, विराजमान हो जाता है। नहीं होता है या नहीं होता है? तो बुद्धि और भी जाती जाम हो जाती है। बुद्धि चलती ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं? न बाप को पहचानती, न बाप के बच्चों को पहचानने देती। और माया बेटी उससे पहले ही हाथ मिला के बैठी हुई है। एक तो माया की शक्ति बड़ी जबरदस्त, लेकिन बाप के बच्चों के योग बल के सामने अव्यक्तवाणी में बोला माया तंग आ चुकी है। क्या है? माया बाप के बच्चों से योग बल में टक्कर नहीं ले पाती, तंग आ गई। चैतन्य माया या जड़ माया? चैतन्य माया, शरीर भी छूट गया, अभी सूक्ष्म शरीर धारण करके ज्यादा पावरफुल हो गई या कम पावरफुल हो गई? ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करते ही मन बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है या देह में बंधी हुई रहती है? सूक्ष्म हो गई। और जैसे ही सूक्ष्म होती है मन और बुद्धि रूपी आत्मा, वैसे ही प्लान बुद्धि में नया आ जाता है। माया थक चुकी, तंग आ चुकी, शरीर भी छोड़ दिया। थकान शरीर से होती है या बिना शरीर के? तो शरीर भी छूट गया, थकान की बात खत्म हो गई, फट से नया प्लान बुद्धि में आया। क्या क्या प्लान आ गया है? अरे हाँ, बाप की जो घरवाली है, है प्रकृति, प्रमाने प्रकष्ठ, प्रति माने रचना। बाप की जो प्रकष्ठ रचना है, जिसकी रचना में बाप ने एड़ी चोटी की ताकत लगाई है, तो ज्यादा पावरफुल बन गई होगी या कम पावरफुल? बहुत पावरफुल बन गई होगी। तो ऐसी प्रकृति से माया बेटी ने क्या किया? हाथ मिलाई लिया, बुद्ध रूपी हाथ दोनों का मिल गया। दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? माया पावरफुल है। थक गई, तंग आ गई, वो पावरफुल है, है? प्रकृति पावरफुल है। माया बेटी है या पत्नी है? है? बेटी तो है, लेकिन आज की दुनिया में जैसे विदेशियों में बेटियां होती है ना, ऐसी बेटी है। नाम क्या दे दिया? माया बेटी। कैसी बेटी? बाप की गोद में ना आई होती, माँ माने नहीं, आया माने आया, बाप की गोद में ना आई होती तो ज्यादा अच्छा था। बिचारा बाप इतना कमजोर पड़ गया। तो माया बेटी जो बेटी है माता पिता की, तो बेटी ज्यादा पावरफुल या उसकी अम्मा ज्यादा पावरफुल? अम्मा ज्यादा पावरफुल होती है। तो बेटी ने बड़ी होशियारी दिखाई। क्या होशियारी दिखाई? हैं? माता से बुद्ध रूपी हाथ मिलाई लिया और माता बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होती है या बाप बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होता है? बाप ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बाप तो विश्व का मालिक है। बाप क्या है? विश्व पिता है। और माता तो घर संभालती है या विश्व को संभालती है? घर संभालती है, घर के बाल बच्चों को संभालती है। तो जो बच्चों के मुकाबले, बच्चियों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है प्रकृति, जो ज्यादा पावरफुल है, उसने माया से हाथ मिला लिया। तो ये बात तो पक्की है कि दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? हैं? प्रकृति पावरफुल है, माता ही पावरफुल है, क्योंकि बाप की पहली रचना है, पहली रचना में ज्यादा ताकत होगी या बाद वाली रचना छोटे बच्चों में ज्यादा ताकत होगी? पहली रचना में ज्यादा ताकत होती है, ये तो ठीक है। लेकिन जो माया बेटी है, वो बेटी बुद्धि में ज्यादा तीखी होती है या शक्ति में ज्यादा तीखी होती है? हैं? बुद्धि में ज्यादा पावरफुल होती है। समझ में आ रहा है? हैं? बुद्धि में बेटी ज्यादा पावरफुल क्यों? बाप की बड़ी बेटी है जैसे बड़ा बेटा होता है, ज्यादा बुद्धि में तीखी क्यों है? बुद्धि में बेटी ज्यादा पवित्र बुद्धि वाली होती है या माता ज्यादा पवित्र बुद्धि वाली होती है? है? बेटी ज्यादा पावरफुल इसलिए बन जाती है कि पवित्र बुद्धि होती है। तो जो पवित्र बुद्धि वाली बेटी है माया बेटी, वो प्लानिंग बड़ी बढ़िया बना लेती है, बुद्धि की प्लानिंग। प्लानिंग के आधार पर उसने प्रकृति से हाथ मिला लिया, और प्रकृति बड़ी पावरफुल है दुनिया में, सबसे जास्ती पावरफुल, बाप के बाद कौन पावरफुल है? प्रकृति। कैसे है? है? बाप के साथ ज्यादा रही, ये तो बात पक्की हो गई, संग का रंग ज्यादा लगा इसलिए पावरफुल हो गई। लेकिन इसका प्रूफ मिलना चाहिए कि प्रकृति ज्यादा पावरफुल वाकई हो गई। उसका प्रूफ है जो सिख धर्म में खास गाया जाता है, क्योंकि वो आत्मा लास्ट जन्म में पंजाब के खून से आती है। जो बोला था व्यक्तवाणी में याद है? है? नहीं, ये भी बोला, हाँ, पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। ये 83-84 की बात है, पक्का सन याद नहीं। सन 84 के आसपास की बात है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई। तो क्या कन्याओं में से कोई कन्या ईश्वर के लिए ईश्वरीय कार्य में इससे पहले किसी ने दान नहीं की थी? हा? नहीं की? अरे ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियों के नाम है। पंजाब की कोई कुमारियां थी नहीं 84 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में? थी या नहीं थी? थी, लेकिन कोई बाप को नहीं जानता था। क्या बाप का परिचय कोई को नहीं था, इसलिए बाप को बड़ा फकुर है इस बात का। क्या जो बच्चे अंदर से समझते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाबा आप ही हमारे ऊपर तरस करो, तो बाबा बड़े फकुर से कहते हैं, अरे बच्चे तुम्हारे अंदर कोई गुण हो या न हो, लेकिन बाप एक गुण सबसे जास्ती देखते हैं, जो बाप के लिए बहुत कुछ मायने रखता है। क्या गुण? बाप की पहचान तुम बच्चों में ही है, जो पहचान दुनिया के और कोई बच्चों में नहीं हो सकती। तुम बच्चे बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड के, अविनाशी यज्ञ कुंड के अविनाशी आत्मा हो। 84 जन्मों में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा हो। तो बड़े बच्चे हुए या छोटे बच्चे? बड़े बच्चों का ग्रुप है रुद्र ज्ञान यज्ञ के पहलौटी के बच्चे तुम हो। तो बाप का कहना है कि बाप की नजर में तुम ही सबसे बड़े गुणवान हो। जिसने बाप को जाना उसने सब कुछ जाना, और दुनिया में जिन्होंने बाप को नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना। बाप को पहचानते हैं, बाप को मानते हैं, तो बाप का वर्षा उनको मिलता है। पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो बाप का अव्वल नंबर का वर्षा मिलेगा? मिलेगा
नहीं मिलेगा।
कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज को ईश्वर बाप का डायरेक्ट वर्षा मिला। कि देवताओं से मिला? नर से डायरेक्ट जो नारायण बने, नारी से डायरेक्ट उसी जीवन में जो लक्ष्मी बने, उन लक्ष्मी नारायण नर नारायण से मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते रूपी राधा कृष्ण को वर्षा मिलता है। भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता। क्या वर्षा मिलता है? और लक्ष्मी नारायण जो बाप की डायरेक्ट रचना है, उनको क्या खास वर्षा मिलता है? हैं? लक्ष्मी नारायण को और उनकी सारी प्रजा को नंबर वन, और उनके परिवार के भातियों को अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलता है। क्या ऊंचे थे ऊंचे वर्षा? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा मिलता है। जो वर्षा राधा कृष्ण सत्युग में जो फर्स्ट जन्म लेंगे उनको नहीं मिलता है। अतीन्द्रिय सुख का वर्षा जीवन रहते नहीं मिलता है। जीवन त्यागने के बाद, देह छोड़ने के बाद, जब तक उनका जन्म सतयुग में न हो बच्चे के रूप में, तब तक उनको कोई वर्षा नहीं मिलता। उसके बाद जो वर्षा मिलता है वो देहधारी देवताओं से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण देहधारी हैं या बिना देह के हैं? देहधारियों से वर्षा मिलता है। भले ऊंचे थे ऊंचे देवताएं हैं, लेकिन देहधारी तो है ना। तो देह में जो कर्मेंद्रियां हैं पांच और ज्ञानेंद्रियां हैं पांच, उनमें श्रेष्ठ कौन सी हैं इंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ आंखें। वो आंखों के सुख का वर्षा ले सकते हैं, लेते हैं राधा कृष्ण मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का वर्षा उन्हें जीवन रहते नहीं मिलता। तो जब ऊंचे थे ऊंचा युग सतयुग और उसके पहली पीढ़ी में आने वालों को ही ऊंचे थे ऊंचे भगवंत का वर्षा नहीं मिलता, तो जो बाद की पीढ़ियों में दुनिया में आएंगे, त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, कलयुग में आके जन्म लेंगे, उनको नीचा वर्षा मिलेगा या सबसे पावरफुल वर्षा मिलेगा? है नीचा ही वर्षा मिलता है। तो बताया ये जो प्रकृति है वो अपनी सारी ताकत दिखाएगी। कौन सी ताकत? पांच तत्वों की ताकत दिखाएगी या पांच तत्वों से परे जो आत्मिक स्थिति की पावर है वो दिखाएगी? क्या दिखाएगी है? क्या दिखाएगी? पांच तत्वों की पावर दिखाएगी। पहले तो उसकी अपनी पावर, सहयोगियों की पावर तो बाद में, जो पृथ्वी की पहली पावर है, बड़े बड़े भूकंप लाएगी। क्या? जिन बड़े बड़े भूकंपों में दुनिया की सारी बिल्डिंगें चाहे एक मंजिल की हो चाहे बहुमंजिला इमारतें हो, सब धराशायी हो जाएंगी। और दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? हम मकानों में रहती है या जंगल में रहती है? हैं? हाँ? तो सब मर पटेंगे। कोई पूछे, प्रकृति रूपी माता, धरणी माता ऐसा विकराल रूप क्यों दिखाएगी? कोई कारण होगा तब कार्य होगा या बिना कारण के कार्य होगा? है? क्या कारण बनता है? दुनिया भी हिसाब से देखें तो ये कारण बनता है कि दुनिया के जो नास्तिक हैं, सबसे बड़े नास्तिक रशियन से जिन्होंने एटम बम बनाए, वो एटम की एनर्जी फोड़ेंगे, बड़े से बड़े बम फोड़ेंगे तो दुनिया में भयंकर आग लगेगी। नहीं, आग ही आग बरसेगी। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी हिल जाएगी। क्या होगा? धरणी रूपी माता, प्रकृति और प्रकृति की भुजाएं, जो भी पृथ्वी पर है, छोटी बड़ी धरणियां हैं। वेद में धरणियां कौन है? हैं? कन्याएं माताएं हिल जाएंगी। मान लो परमात्मा बाम भी फूटता है ग्लानी का, अभी सबसे जास्ती ज्ञान में चलने वालों की संख्या कन्याओं की है, अदर कुमारों की है कि अदर कुमारियों की है या कुमारों की है? हैं? माताओं की है। तो वो माताएं जब परमात्मा बम्ब फटेगा दुनिया में, टीवी में ग्लानी की भयंकर चारों ओर से आवाज निकलेगी, बाप के प्रत्यक्षता की ग्लानी, प्रत्यक्षता बम। क्या ग्लानी? अरे जिनको ये बाप कहते हैं वो ऐसे करता है वैसे करता है, ये बिशपाई है ये ऐसे करता है, ये उनको नहीं छोड़ता, ये उनको नहीं छोड़ता, ऐसा करता है। ये ग्लानी है या महिमा है? है? ग्लानी है। जो काम दुनिया के कलयुग के अंत में सारे ही प्राणी कर रहे हैं, मनुष्य मात्र कर रहे हैं, क्या काम? दुनिया के मनुष्य मात्र खासकर भारतवासी विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं कलयुग के अंत में? खास भारतवासी राजाएं तो युगों से प्रभावित हुए पड़े हैं, विदेशियों की व्यभिचारी प्रवृत्ति से, और राजाएं इतने व्यभिचारी बन गए कि विदेशी इतनी रानियां नहीं रख सके, और भारत के राजाओं ने है ढेर की ढेर रानियां रखी। तो व्यभिचारी हुए या नहीं हुए? है हुए यथा राजा तथा भारत की प्रजा बन गई। अभी वो ही राजाएं, अभी वो सारी प्रजा जो भारतवासी अपन को कहते हैं, वो सब व्यभिचारी बने पड़े। यहां तक कि शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से मुरली में ही बोल दिया, हम बच्चों के लिए भी बोल दिया, जिन बच्चों के ऊपर बाप को बड़ा फकुर है, इन बच्चों में दुनिया का एक बड़े से बड़ा गुण है बाप की पहचान का, उन बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे भी 10, 20, 50 भूले तो दृष्टि के व्यभिचार की रोज ही करते होंगे, नहीं तो काउंट करो किसी दिन। करते हैं या नहीं करते हैं? तो सारी दुनिया के सारे ही प्राणी मात्र कलयुग के अंतिम जन्म में व्यभिचारी बन जाते हैं विदेशी मनुष्यों के प्रभाव में आने से, मनुष्य आत्माओं के प्रभाव में आने से। तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो बच्चों के मुकाबले बच्चे का ही काम करेगा या बच्चों का भी बाप बन के काम करेगा? जो मुरली में ब्रह्म वाक्य में बार बार वाक्य आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। कौन आया हुआ? तुम्हारा बाप आया हुआ। नई दुनिया बनेगी, तो जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ तुम लेंगे, ज्ञान इंद्रियों में आंख का सुख हो या उससे भी ऊंचा सर्वोपरि सुख दुनिया का अतीन्द्रिय सुख हो, उस सुख में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। और जो नीचे से नीचा कीड़े मकोड़ों का, जानवरों से भी बदतर राक्षसी सुख है, वो सुख लेने में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। जो शास्त्र में गायन है, कि ज्ञान सागर का मंथन हुआ, देवताओं ने भी मंथन किया, असुरों ने भी मंथन किया, तो पहले पहले क्या निकला? हालाहल विष निकला। ये क्या होता है? सारी दुनिया के देवात्मा, दैत्यात्मा, मनुष्यात्मा, प्राणी मात्र सब घबराने लगे। अंदर अंदर से घबराहट होती है या नहीं होती है? है? नहीं होती है। जब विचार दोष के कारण बार बार शक्ति क्षीण होती है, शरीर की कर्मेंद्रियों की और साथ साथ आत्मा की भी शक्ति क्षीण होती है। जो बाबा कहते हैं पांच बीमार से नीचे गिर जाते हैं। अगर काम विकार में गिरे तो क्या रिजल्ट होता है? सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। सभी ब्राह्मण बच्चों ने अच्छी तरह से अनुभव किया या नहीं किया? जरूर किया है। कि पांच बीमार से नीचे गिरने के बाद जो ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में दौड़ना चाहिए, वो ईश्वरीय ज्ञान का मंथन होता ही नहीं। और शंकर की क्या स्टेज दिखाते हैं शास्त्रों में? मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में सदा ही मस्त रहता है या देवान में नीचे गिर जाता है? अमोघ वीर्य बनकर रहता है या जो सत्व है आत्मा का, शरीर का, इंद्रियों का, वो पतन की ओर चला जाता है? जो शास्त्र में गाया हुआ है, अमोघ वीर्य, कारण बताया, मंथन क्यों नहीं चलता और क्यों चलता है सबसे जास्ती? शंकर को सूक्ष्म बतन की स्टेज में क्यों दिखाया जाता है? और दुनिया के जो तीन बड़े से बड़े देवताएं हैं उनमें भी उनको टाइटल मिला हुआ है देव देव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर महादेव, किस आधार पर मिला हुआ है? बड़े से बड़ा देव, देव माने दाता, देने वाला, लेने की इच्छा रखने वाला नहीं। इस बात का दाता है, सब कुछ इस दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है उसका दाता है। जो दाता होता है वो लेने की इच्छा रखता है, है? नहीं रखता। तो ज्यादा मंथन किसका चलेगा ईश्वरीय ज्ञान में? दुनियावी सुखों के लेने की इच्छा जिसकी होगी उसकी बुद्धि ज्ञान के मंथन में ज्यादा चलेगी या दुनियावी सुखों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस दुनिया के कोई सुख लेने की इच्छा नहीं सिवाय ईश्वरीय ज्ञान के, सिवाय ईश्वर के दिए हुए सुख के और कोई भी इच्छा नहीं। नष्ट हुआ स्मृति लोग जब से बाप को पहचाना होगा, वो एक ही बड़े से बड़े देवता की बात नहीं है, 84 जन्मों में सहयोगी बन करके रहने वाली 8 भुजाओं रूपी आत्माओं के लिए भी यही बात लागू होती है। अष्टदेव जब से इस ज्ञान में आए होंगे, एडवांस ज्ञान में जब से बाप को पहचाना होगा, उनकी क्या खासियत देखने में आवेगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तन भी तेरा, तन और तन की जो इंद्रियों का सेवा है वो भी तेरे लिए, देह के अजीज से अजीज संबंधियों के लिए कुछ भी नहीं, इतने पक्के होंगे शुरुआत से ही। धन की सेवा, जो भी जीवन में टटपुंजिया धन कमाया होगा उसकी सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, देह और देह के संबंधियों की सेवा में नहीं, देह के पदार्थों की लालसा में नहीं, बड़े प्यार से खिचड़ी खाएंगे ऐसे नहीं जैसे बंगाली लोग कहते हैं, अरे मछली नहीं मिलेगी तो हमें ज्ञान ईश्वर का नहीं चाहिए। तन भी तेरा, तन के संबंधी भी तेरे, माने संबंधियों की जो भी पावर है, जीवन में जो भी आत्माएं संपर्क में आई होंगी उनकी जो भी पावर उनके मुट्ठी में होगी, दोस्तों की सखा सहेलियों की, वो सारी पावर ईश्वर के लिए अर्पण करेंगे, अपने लिए नहीं। कैसी भी परीक्षाएं आ जाएं, देह के संबंधियों से, देह के साथियों से भीख नहीं मांगेंगे, ईश्वरीय आधार पर चलेंगे, परीक्षा देंगे और पास होकर दिखाएंगे। तन भी तेरा, धन भी तेरा, और जो भी मन के संकल्प हैं वो ईश्वर की श्रीमत के अनुकूल चलेंगे या असुरों की मत के अनुकूल चलेंगे? हैं? ईश्वर ने जो डायरेक्शन दिए, जो मत दिए उसी मत के अनुकूल चलेंगे। ऐसी 8 आत्माएं जो महादेव के आत्मा के जन्म जन्मांतर के सहयोगी बनते हैं, उनमें भी ये खासियत क्या है? क्या खासियत बताई है? मनन चिंतन मंथन की सारी शक्ति मन की कहाँ लगाएंगे? ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। तो ऊंची स्टेज हुई मन बुद्धि रूपी आत्मा की या नीची स्टेज हुई? ऊंची स्टेज हुई। ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्माएं प्रकृति के पांच तत्वों के प्रभाव से परे हो करके रहेंगी, ईश्वर बाप के सहयोग से। ईश्वर बाप की मत पर चलने के आधार पर और प्रकृति कौन सी पावर दिखाएगी? अरे ईश्वरीय पावर दिखाएगी या ईश्वर ने मनुष्य सृष्टि के बाप उद्या पिता को जो निराकारी ज्ञान दिया है, क्योंकि आत्माओं का निराकारियों का बाप है तो कौन सा वर्षा देगा? निराकारी वर्षा क्या ज्ञान? उस बाप की मत को ठुकरा देगी, अपनी मत पर चल पड़ेगी, क्योंकि उसके नक्शे कदम पर चलने वाले जो बच्चे हैं, उसके जो सहयोगी हैं, देह के पांच तत्वों के सहयोगी, क्या देह में होता है? देवन। देह में क्या होता है? देवन। रावण के पांच मुखों को पैदा करने वाला क्या है? देवान रूपी गधा, जो रावण के सर पर सवार रहता है। दिखाते हैं चित्र में नहीं? तो प्रकृति रूपी जो माता है उसके सर पर भी कौन सवार होता है? है? अरे वो ही देवान, अधूरा चंद्रमा, संपूर्ण ज्ञान चंद्रमा नहीं, वो देवान पांच तत्वों का मूल है। कौन कौन का? देह रूपी मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, ये जो देवता रूप में आत्माएं दिखाई जाती है, ये आत्माएं जड़त्व बुद्धि होती हैं, उसी प्रकृति की गोद में खोलने वाली हैं। ये आत्माएं प्रकृति रूपी माता को अपनी सारी शक्तियां तिरोहित करती है। सारे संसार में अग्नि भयंकर प्रभाव दिखाती है। एटम बमों की आग में तो सारी दुनिया तपेगी ही, सूर्य में से जो अग्नि का ताप निकलता है उससे भयंकर तपित होगी। जल, सारी पृथ्वी पर जल में ही लाएगा। क्या क्या लाएगा? जल क्या लाएगा? है, जल क्या लाएगा? सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी। जैसे आग बरसती है ना, वो तो स्थूल आग है। जो द्वापर युग में द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने से शुरू होती है, क्योंकि धर्म पिताओं के आने से कामाग्नि भी शुरू होती है। देवताओं में कामाग्नि नहीं होती थी। तो जैसे ये कामाग्नि सारे संसार में भयंकर रोला मचाएगी, ऐसे ही ये जलमयी ज्ञान जल जो है सारी दुनिया में ऐसी भयंकर बाढ़ लाएगा, जिस बाढ़ में सारे विदेश जो 2500 साल पहले थे ही नहीं, विदेशी धर्मखंड ना आदि में थे सृष्टि के आदि में और ना अंत में रहेंगे नहीं, सब डूब जाएंगे। जलमग्न सारी सृष्टि हो जाएगी। जब बाढ़ आती है तो क्या खास बात हो जाती है? हाँ, दे अभिमानी की मिट्टी अच्छे से मिल जाती है। तो अभी क्या बताया, बच्चों में देवान बहुत बढ़ गया है। उस देह अहंकार के कारण अपने को ही बाप समझ बैठते हैं। जैसे इस सृष्टि का बड़े से बड़ा बच्चा कौन, पहला पत्ता कौन है? कृष्ण बच्चा। वो गीता माता का पति बन करके बैठ जाता है, क्या समझता है अपने को है? देवान के आधार पर क्या समझता है? अरे मैं ही गीता माता का साकार भगवान हूँ, मेरे अलावा दुनिया में कोई भी गीता माता का साकार भगवान गीता पति नहीं हो सकता। तो आज दुनिया में उस बड़ी माता के रूप में पार्ट बजाने वाले पहले पत्ते को सभी माताएं फॉलो कर रही हैं। सब माताओं के बड़े बच्चे वान खास का बाप न रहे, पति न रहे, तो किसके कंट्रोल में आ जाती है? बच्चे के कंट्रोल में आ जाती है। घर घर में गीता पति भगवान बने बैठे हैं बच्चे। उन बच्चों का बड़ा फखर रहता है। क्या सबसे बड़ा बच्चा कौन? वर्तमान संगम युग में कृष्ण तो सत्य युग में होगा, वर्तमान में क्या है? दादा लेखराज क्या? ब्रह्मा जो रावण के सिर के ऊपर दिखाया जाता है, साक्षात देहभान। कितना भी ज्ञानी स्नान कराओ फिर भी क्या करेगा? देहभान की मिट्टी में लौट जाता है। वो बच्चा रूपी मिट्टी का देहभान, ज्ञान जल में मिक्स हो जाएगा। जब परमात्मा बम फटेगा, दुनिया का बड़े से बड़ा बम क्या रिजल्ट होगा है? नहीं समझ में आया? अरे बम फटेगा बड़े से बड़ा, तो धरणी डोल जाएगी या नहीं डोलेगी? धरणी डोलेगी तो धरणी माने पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो दरक के समंदर में आएंगे या नहीं आएंगे? तो समंदर का जल स्तर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और पृथ्वी जो मुख्य तत्व है पांच जड़ तत्वों में से, वो चलायमान होगा, जिन्हें चैतन्य में हम कहें माताएं रूपी धरणी। परमात्मा बांब फटेगा ग्लानी का तो ज्यादा से ज्यादा बंधन में कौन आएंगी? माताएं बंधन में आ जाएंगी। तो उनका दिल डोलेगा या नहीं डोलेगा? है? डोलेगा। इसलिए बात कहते हैं ब्रह्मा बाप के द्वारा समझो कहलवाते हैं, अचल रहना है, हलचल में नहीं आना है। कैसा भी बड़े से बड़ा ग्लानी का बम फटे परमात्मा बम, लेकिन क्या करना है? अचल रहना है, अटल रहना है, क्योंकि प्रकृति तो अपनी सारी पावर दिखाएगी। क्या देवान की मिट्टी की भी पावर दिखाएगी? जो ज्ञान जल है वो बाढ़ लाएगा सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी जलमयी हो जाएगी। और जलमयी में क्या होगा? कैसा जल होगा? है मटमैला, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं देहबान वाली हैं, जिनमें अग्नि रूपी देवता भयंकर काम अग्नि पैदा कर देगा, तो समंदर का जल, सागर का जल वाइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? एटम बम फटेंगे, गर्मी बढ़ेगी तो समंदर का पानी वाइल्ड वाटर बनेगा, जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल के बड़े बड़े मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ गरक के आ जाएंगे, स्तर ऊंचा उठेगा। और अंतिम स्थिति ऐसी होगी जिसमें पृथ्वी माता का, धरणी माता का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? है चंद्रमा। वो चंद्रमा जो बच्चा है पृथ्वी माता का उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, उसमें आकर के गोद में गिरेगा प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर का जो जल स्तर है, जो दुनिया का बड़े से बड़ा जल का जमावड़ा है प्रशांत महासागर, वो जल स्तर और ज्यादा ऊंचा उठेगा या नीचे जाएगा? और ज्यादा ऊंचा उठेगा। उसमें दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धर्मखंड हैं, विधर्मी धर्मखंड, विदेशी धर्मखंड, वो सात समुन्दर के अंतराल में समा जाएंगे। और पृथ्वी का जल इतना बढ़ जाएगा जिसमें सारे प्राणी शरीर से डूब मरेंगे। क्या वो मटमैले ज्ञान जल में डूब मरेंगे या आंखें जागृत हो जाएंगी? डूब मरेंगे। भले कोई में ज्यादा योग बल की पावर हो, योग बल की पावर से भोग बल बढ़ाने वाले काम अग्नि को कंट्रोल करने वाले कैसे भी बड़े बड़े योगी हों, बच्चे वो सब हताश हो जाएंगे और ज्ञान जल में जो मटमैला जल हो जाएगा दुनिया का, उसमें सब अंधे हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा प्राणी कौन सा होता है जो बहुत कामी माना जाता है? सांप। जो सांप कहो सांपों का राजा वासुकी, क्या क्या नाम दिया? वासुकी। वो मनुष्य सृष्टि के बाप के गले को भी जकड़ लेता है।
क्या?
जिस सांप में बहुत काम अग्नि होती है, वो प्राणी एक ही प्राणी है और उनका राजा, सांपों का राजा वासुकी, जगत पिता के गले को जकड़ लेता है। किस बात में? अरे कौन से विकार से जकड़ लेता है? काम विकार से जकड़ लेता है। इतना जकड़ लेता है और वो बाप मस्त रहता है, है? कोई के गले में सांप जकड़ मार जाए तो घबराएगा, प्राण निकल जाएंगे, जैसे फांसी लग गई हो, या मस्त रहेगा, है? मर जाएगा। लेकिन ये जो जगत पिता है, कौन है? जगतम पितरम वंदे, जगत का पितर पिता है, जगन्नाथ कहा जाता है, जगत पिता की जकड़ होते हुए भी मस्त रहता है। किस प्रभाव से? उसके अंदर क्या प्रभाव काम करता है? कौन सी प्रतिभा काम करती है? अरे योग बल। कौन सा बल? योग बल। क्योंकि वो योगीश्वर कहा जाता है। तीन ही नाम हैं जिनको योगीश्वर का टाइटल दुनिया में मिला है शास्त्रों में, एक शंकर, दूसरा कृष्ण योगीराज, और तीसरा ब्रह्मा का बड़ा पुत्र मानसी पुत्र, पहला बच्चा सृष्टि का सनत कुमार। जिस सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ता है, वो सनातन धर्म की स्थापना भोग बल के आधार पर होती है या योग बल के आधार पर होती है? योग बल के आधार पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना, सत्य सनातन धर्म की राजधानी तैयार होती है। ऐसी राजधानी सशक्त जिस राजधानी के संगठन में क्या बताया खासियत, एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा, दुनिया का कोई ताकतवर से ताकतवर प्राणी हो, मनुष्य हो, धर्म पिता ही क्यों न हो, वो धर्म पिताएं संगठित रूप में रावण के सर की तरह इकट्ठे क्यों न हो जाए, तो भी उसकी राजधानी को हिला नहीं सकेंगे। ऐसी सशक्त राजधानी ईश्वरीय राजधानी होगी। जो बोला है ब्रह्म वाक्य में, मुरली में, कि मैं जब आता हूं तो दख से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं, अरे 80 साल हो गए हम बच्चों को ज्ञान में चलते चलते, हम बच्चे दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमें बाप मिल गया भगवान, भगवान बाप इस सृष्टि पर आया है, ढिंडोरा पीट रहे हैं कि नहीं है, पीट रहे हैं। और बाप कहते हैं मैं आता हूं तो मेरे आने की निशानी क्या बताई है, दख से राजधानी स्थापन कर देता हूं, 80 साल ना करवड़ने की दरकार है नहीं मुझे आत्मा को। ऐसी शक्ति क्या है, ऐसी क्या शक्ति है जो गायन है राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई, वो सेकंड किसके लिए गाया हुआ है, क्या नाम बताया, जनक को, जन माने जन्म, का माने करने वाला, अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि का नया जन्म, मनुष्य सृष्टि माना नई मनुष्य सृष्टि का जन्मदाता, नाम क्या दिया, जनक, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, और एक सेकंड में दख से राजधानी स्थापन कर देते, तो उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ इस संसार में या नहीं हुआ, हुआ। हाँ भाई क्यों नहीं हुआ, ब्रह्मा कुमारियों को 80 साल हो गए, उसका जन्मदिन मनाते मनाते हर वर्ष नंबर बताते हैं, 71वां जन्म दिवस, शिव जयंती, 75वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती, ब्राह्मणों की दुनिया में मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, है? तो कितने साल हो गए, है? इतने साल हो गए कि नहीं, तो क्या वाकई हो गए, आया कि नहीं आया, गुप्त में आया, अरे बच्चा की आत्मा माता के गर्भ में गुप्त में आती है तो उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, वो बच्चा बाहर आता है दुनिया में तो सब कोई कहता है बच्चे का जन्म हुआ, पड़ोसी भी आवाज सुनेगा, आकर भले बच्चे को देखे नहीं, उआ उआ की आवाज सुनेगा, बोलेगा घर वालों को पड़ोस में बच्चा आ गया, तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ, है नहीं हुआ? हुआ। कानों से सुनेगा तो भी कहेगा आ गया, और आकर के निस्थूल आंखों से देखेगा तो भी कहेगा आ गया। बाबा ने भी निशानी बता दी है, क्या है? जोर से बोलो ना, कोई खा जाएगा क्या? नहीं, बाबा ने बताया, ब्रह्मा मुख से ही बताया, अव्यक्त वाणी में भी बताया। बाप की प्रत्यक्षता की निशानी ऐसे ही स्पष्ट देखने में आवेगी, जैसे महात्मा बुद्ध के चेहरे पर दिखाई देती है अव्यक्त स्थिति, क्राइस्ट के चेहरे पर दिखाई देती है अव्यक्त स्थिति, आत्मा निराकार दिखाई देती है या देवभान दिखाई चपकता है देह चेहरे से, गुरु नानक में देवभान की स्थिति दिखाई देती है कि आत्मा का स्वरूप टपकता है, आत्म की स्थिति रूहानी स्टेज। तुम बच्चों की नंबरवार अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी, ये महावाक्य बोला है। क्या? जैसे धर्म पिताओं की अव्यक्त स्टेज धर्म पिताओं को प्रत्यक्ष कर गई, ऐसे ही जो दुनिया के ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं धर्म पिता हैं, उन बापों का भी बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ये टाइटल साकार का है या निराकार का? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बाबा को कहा जाता है, बाप के बाप को, बापों का बाप मना ग्रैंडफादर। शिव बाप का हम आत्मा रूपी भाई भाइयों के साथ, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, उनके साथ बाप का संबंध है या बाबा का संबंध है? ग्रैंडफादर है या सिर्फ बाप है? क्या है? ग्रैंडफादर है शिव बाप ज्योति बिंदु, वो आत्माओं का बाप है या बाबा है? सिर्फ बाप है, बाबा नहीं। कोई मनुष्य तन में जब प्रत्यक्ष होता है और मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्षता होती है संसार में, तब दुनिया जानती है ये ग्रेट फादर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी बाप है, ग्रैंडफादर है, जिसको टाइटल मिलता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, बाबा। बाप का वर्षा मिले या नहीं मिले, लेकिन दादे का वर्षा माने बाबा ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है। वो क्या वर्षा है? वो क्या वर्षा है ग्रैंडफादर का? ज्ञान निराकारी वर्षा निराकारी बाप से मिलता है, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप निराकारी वर्षा देता है, साकार मनुष्यों का बाप साकार वर्षा देता है। स्वर्ग साकार है या निराकार? स्वर्ग साकार है, स्वर्ग का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। इसलिए स्वर्ग में होती है जीवन मुक्ति, इसी दुनिया में हम बच्चों को अपना वाइब्रेशन सुधार करके संगठन में स्वर्ग बनाना है वाइब्रेशन के आधार पर, या नरक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वाइब्रेशन हम संगठन में कैसा बनाएंगे? आत्म की स्थिति का वाइब्रेशन बनाएंगे, जो सत्युग में हम जन्म लेने लायक बने। अंतमते सो गति, महामृत्यु के समय। साधारण मृत्यु तो जन्म जन्मांतर होती रही, अंतिम महामृत्यु के समय, महामृत्यु के महाविनाश के टाइम पर, जब सब के अपने अपने शरीर छूटेंगे, तो उस समय हमारा वायुमंडल वाइब्रेशन सुख का होना चाहिए मन बुद्धि रूपी आत्मा में, या दुख का होना चाहिए? सुख के वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे। इसलिए बोला, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। सवाल पैदा, इस दुनिया में तो नरक ही है, नरक में सारे ही शरीर छोड़ रहे हैं, तो स्वर्ग में जन्म कैसे ले लेंगे? हाँ, आत्मिक स्थिति में वाइब्रेशन बनाने की बात है, सुख का वाइब्रेशन बनाए। सुख का वाइब्रेशन बनाने के लिए पहले सुखदाता, सुख की दुनिया का रचयिता बाप को जाने। जो बाप का रूप, बाप की आकृति, सारी दुनिया देश और विदेश की खुदाइयों में मिली है, और सबसे जाति तादाद में मिली है, और सारे भारत के गांव-गांव में, शहर-शहर में उस आकृति की यादगार शिवालय में पूजी जाती है। कौन सी? शिवलिंग। जिसका परिचय देने के लिए मुरली में बाप बार बार कहते रहे, बच्चे बाप का परिचय दो। त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचे से ऊंचा बाप का परिचय दो। जिस बाप की यादगार में, जो बाप त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, जिसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बना है दिल्ली में, शहर शहर में त्रिमूर्ति रोड नाम रखा जाता है, तो हाउस एक होगा या दो तीन चार होंगे? हैं? एक ही हाउस का नाम त्रिमूर्ति हाउस, और रोड माने रास्ता, एक ही रास्ता बताने वाला एक होगा, तीन चार रास्ता बताने वाली आत्माएं होंगी, एक ही आत्मा होगी, तो वो एक आत्मा है जिसकी यादगार सोमनाथ के मंदिर में दिखाई गई। द्वैतवादी युग के सात्विक पीरियड में, आदि में, हर युग चार अवस्थाओं से पसार होता है, द्वापर के आदि में वो सात्विक यादगार बनी थी सोमनाथ के मंदिर में। पत्थर के लिंगाकार में हीरा दिखाया गया था, वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? निराकार की यादगार। निराकार हीरो पार्ट बजाता है, बजाता है, हीरा तो हीरो पार्टधारी की यादगार है, और हीरा पत्थर है या नहीं? जैसे और रतन पत्थर होते हैं, वैसे हीरा भी बेशकीमती माना तो जाता है, लेकिन है तो पत्थर है या नहीं? और शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है इसलिए त्रिकालदर्शी है, वो पत्थर बुद्धि बनता है। तो पत्थर क्यों कह दिया? हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में लिंगाकार पत्थर में जड़ा हुआ था, वो हीरा शिव ज्योति बिंदु की यादगार है, है? वो शिव बाप की आत्मा, सुप्रीम सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में ब्रह्म वाक्य बोल कर गई, वेद वाक्य, वेद वाणी बोल कर गई, वो वाक्य भूल गया क्या? न मैं पूज्य बनता हूँ, न मैं पुजारी बनता हूँ। तो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर में हीरा रखा हुआ था, वो शिव की यादगार है। अखूट ज्ञान के भंडार की यादगार है या अखूट योगी की यादगार है? है? अखूट योगी की यादगार है। जब तक संगम युग रहेगा उसका योग अखूट है, इसलिए मुरली में बोला छोटा रूप याद नहीं आता है, बिंदु रूप याद नहीं आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। अरे बड़े रूप को पहचाना है या नहीं पहचाना? पहचाना है तो याद करो। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो बड़ा रूप साकार की यादगार है। साकार को सगुण कहा जाता है, रामायण में भी लिखा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही संसार में साकार है। क्यों? क्योंकि निराकार का विरोध है इस दुनिया में आने के बाद। मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा। क्या बना कर जाएगा? नंबर बार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अव्वल नंबर कोई बच्चे को बनाएगा। जिस अव्वल नंबर बच्चे को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आप समान बना, शक्तिशाली बनाकर जाता है, सब शक्तिवान बनाकर जाता है, उसके लिए ही कहा और साथ साथ नंबरवार सब बच्चों के लिए कहा। क्या? मैं सर्वशक्तिवान तो हूँ, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। मास्टर माने प्रैक्टिकल जीवन में शक्ति धारण करने वाला। ज्ञान थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? थ्योरी है। तो थ्योरी का अखूट भंडार है कौन? निराकार आत्माओं का बाप शिव। प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। क्यों? प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है, प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के द्वारा होता है। क्यों नहीं प्रैक्टिकल कर सकता? क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए देह में प्रवेश करता है, रथ में प्रवेश करता है। क्या? अर्जुन की आत्मा ली, आत्मा को बस में किया या रथ को कंट्रोल किया? है? क्या कंट्रोल किया? आत्मा को कंट्रोल किया, आत्मा को स्वतंत्र नहीं छोड़ा, श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो, न चलना चाहो न चलो। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, ये नियम शिव बाप ने नहीं अपनाया, अपनाया ना? अरे अपनाया, उसने तन को कंट्रोल किया। क्या याद की भी यही बात है, यही रहस्य है, यही राज है। क्या बांधेली माताओं का तन भले कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ईश्वर भी कंट्रोल नहीं करता। शिव बाप अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल करता है कि उसके शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है? है, शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। चाहो तुम अच्छे संकल्प करो, चाहो तुम व्यर्थ आसुरी संकल्प करो। अच्छे संकल्प करोगे, कर्मेंद्रियों से अच्छे कर्म करोगे, अच्छी वाचा चलाओगे, श्रीमत के अनुकूल चलाओगे तो सुखी रहोगे जन्म जन्मांतर। नहीं चलाओगे तो जन्म जन्मांतर दुखी हो जाओगे। तो आत्मा को कंट्रोल किया या तन को कंट्रोल किया? हैं? तन को कंट्रोल किया, और तन जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ है। माने प्रजापिता का जो तन है वो दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी देखो ध्यान से, ब्रह्मा कैसे बैठा है और शंकर का तन कैसे बैठा हुआ दिखाया गया है। बोला भी है मुरली में, जिसे तुम बच्चे भगवान बाप समझते हो, साकार निराकार का मेल समझते हो, उसमें से शिव को हटा दो तो क्या बचेगा? है, शव बचेगा, मुर्दा बचेगा। मुर्दा जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ होता है। मना अंतिम जन्म में आकर के विदेशियों विविचारियों के संग के रंग में आकर के वो आत्मा कौन? कौन आत्मा? मनुष्य सृष्टि का बाप। इतना ज्यादा विविचारी हो जाता है शरीर से कि पत्थर जैसा हो जाता है। अस्सी साल हो गए शिव बाप को समझाते समझाते, लेकिन उस पत्थर बुद्धि की बुद्धि में वो पॉइंट बैठता ही नहीं। कौन सा पॉइंट है? गीता का भगवान नहीं बैठता? अरे मुरली का वो पॉइंट है, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। क्या शिव बाप ज्ञान अमृत दे रहे हैं प्रतिकल जीवन में इंद्रियों से धारण करने के लिए? वो इंद्रियों से ज्ञान की मुख्य बात क्यों नहीं धारण करता? मुख्य ज्ञान क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो विषपाई का जो पार्ट है वो विष पीना छोड़ता है। अरे छोड़ता है, है? अरे दुनिया के सारे काम पवित्रता से संपन्न होते हैं, प्योरिटी से संपन्न होते हैं या अपवित्रता से संपन्न होते हैं? पवित्रता से दुनिया के सारे काम संपन्न होते हैं। पवित्रता ही सत्य है, पवित्रता ही सत्य है। पवित्रता ही सत्य है। पुरुष उस सत्य या सत्य की शक्ति को परिपूर्ण नौजवान होने तक, कलयुग की दुनिया में धारण करके नहीं रह सकता। कौन? पुरुष रूप या स्त्री रूप, माता रूप या पिता रूप, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन पुरुष। सब स्त्रियों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो माताएं कन्याएं हैं वो पुरुष के उस सत्य को जीवन में धारण कर सकती हैं सच्चाई से। नहीं समझ में आया? जो धारण करती है सच्चाई से वो सती कही जाती है। वो सती में इतनी शक्ति है, उस सती की शक्ति के आधार पर जलंधर, राक्षस, भगवान और भगवान के पूरे परिवार को हरा देता है। भगवान भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतनी सत्य को, सत्य को, सत्य को धारण करने वाली सती की शक्ति है। और वो सती नारियां, सती कन्याएं भारत में ही हुई हैं। कहां हुई है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, ज्ञान की रोशनी को धारण करने में जो जीवन भर लगी रही वो ही सती है। ज्ञान की रोशनी को धारण करने में शंकर नहीं लगा रहता? शिव बाप का बच्चा बड़ा बच्चा है या नहीं है? वो नहीं लगा रहता? लगा रहता है या नहीं?
लगा रहता है,
है वो राम की आत्मा कही गई। राम बाप को कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। उस बाप के लिए क्या बोल दिया? बाता है नहीं पता? राम ही मालूम तो सब कुछ है, याद दिलाओ तो याद आएगा है। आप ही तरह से पर हुई, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, मुझे याद ही नहीं आता मौखिक। जब मनुष्य सृष्टि का बाप राम ही उस सत्य रूपी ज्ञान कहो, सत्य रूपी वीर्य कहो, सत्य कहो, क्योंकि पुरुष है धारण नहीं कर सकता जीवन भर। बोलो, पुरुष धारण कर सकता है? हैं? दुनिया का कोई पुरुष जीवन में धारण कर सकता है? अरे बोलते काहे नहीं, तब हो करके बैठे हो, यही पता नहीं चलता चेहरे से कि समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। धारण करता है कि नहीं करता है? नहीं कर सकता। इसलिए दुर्योधन दुशासन है सब पुरुष, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े देवता या धर्म पिता हो, ग्रेट फादर ही क्यों न हो, लेकिन वह सत्य की शक्ति को, चाहे वो स्थूल शक्ति हो चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्या नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। यही माने संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, लेकिन कोई धारण कर सके तो। नहीं समझ आया? वो है सूक्ष्म शक्ति ज्ञान, और वो है स्थूल शक्ति सत्व। जो पुरुषों में सत्व होता है वीर्य, उसको पुरुष जीवन भर धारण नहीं कर सकता, चाहे सूक्ष्म सत्य की शक्ति हो और चाहे स्थूल शक्ति हो। कौन धारण कर सकता है? हैं? अपनी पर उतर आए, पक्का निश्चय कर ले तो माता धारण कर सकती है, कन्या धारण कर सकती है, पुरुष धारण नहीं कर सकते। ये ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। तब क्या करना चाहिए है? अरे पुरुषों को क्या करना चाहिए, कन्याओं माताओं को क्या करना चाहिए? कन्याओं माताओं को तो वरदान मिला हुआ है, तो स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? कन्याएं माताएं ही खोलेंगी। शास्त्रों में भी आया है ज्ञान का कलश किसको दिया? माताओं को दिया। तो जिनको ज्ञान का कलश मिलता है जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करने के लिए, प्रैक्टिकल माने शरीर के द्वारा, प्रैक्टिकल माने इंद्रियों के द्वारा, तो सच्चाई से क्या क्रिया चरित्र से नहीं, सच्चाई से उससे सत्य कहो, उसे सत्व कहो, पवित्रता की बड़े से बड़ी शक्ति कहो, ज्ञान कहा ना, किसने दिया? ऊंचते ऊंच बाप ने दिया, ऊंचते ऊंच बाप का जो वर्षा है वो बड़े से बड़ी शक्ति होगी या नहीं होगी? उसके समान कुछ भी पवित्र नहीं है, लेकिन क्या जीवन में धारण करके रह सके तब, और पुरुष धारण नहीं कर सकता। पुरुष एकांत पा करके दुर्योधन दुशासन भी बन पड़ता है, और शक्ति को छीन कर देता है। बाप ये बात नहीं कहते कि दुर्योधन दुशासन बनो, दुष्ट युद्ध करो, दुष्ट शासन करो बाहुबल का। बाप कहते हैं सुख देना है और सुख लेना है। इंद्रियों से क्या करना है? सुख देना है और सुख लेना है, न इंद्रियों से दुख देना है न दुख लेना। तो पुरुष जिनको ये टाइटल मिल गया भगवान से कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, वो ऐसा प्रयास नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते हैं। माने भगवान बाप की जो वाणी है उसको झूठा साबित कर सकते हैं। बाप ने तो बोल दिया क्या पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, और प्रमाणित भी कर दिया 70-80 साल के बुढ़े भी बच्चा पैदा कर सकते करते रहते हैं। बुढ़े जवान की बात नहीं है, मन को कंट्रोल करने की बात है। मन को कंट्रोल किया तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो बताया कि माताओं में जो सबसे बड़ी माता है संसार की कौन है? जगदम्बा। लक्ष्मी नहीं है?
हाँ लक्ष्मी।
दो दो सबसे बड़ी एक होगी या दो होंगी?
एक नंबर की माँ
है,
दूसरे नंबर की माँ, दूसरे नंबर की लक्ष्मी है।
अरे सत्ता एक होगा या दो होंगे? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य को ही भगवान कहा जाता है। अगर स्त्री चोला है तो भगवती कहा जाता है। तो अव्वल नंबर में धारण करने वाली एक होगी या दो होंगी? एक होगी, दो नहीं हो सकती। अगर दो हैं भी तो उनके स्वभाव संस्कार को दोनों आत्माओं को मिलाकर के एक करना पड़ेगा, जिसकी यादगार है महालक्ष्मी। क्या भारत माता और जगदम्बा, लक्ष्मी और जगदम्बा, महाकाली, गौरी और महाकाली, महागौरी और महाकाली, दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे, तब तक समस्या का हल होने वाला नहीं है, संपूर्ण राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? है लक्ष्मी ज्यादा पावरफुल है, सारे जगत की अम्बा बन जाती है, सारे जगत माने 500-700 करोड़ की अम्मा बन जाती है, है? या देवताओं की अम्मा है? देवताएं तो थोड़े होते हैं और जगत में तो देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं, मनुष्य भी हैं। वो जगत की अम्मा जगदम्बा और वो भारत माता है। कौन सी माता? भारत माता। भारत बामने ज्ञान की रोशनी में जो सदा लगा रहता है उसकी माता। और जगत पिता जो जगत पिता है जिसे कहा जाता है जगन्नाथ है गोरा होता है या काला होता है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में जाकर कभी देखा मूर्ति कैसी है काली है बड़ी बड़ी आंखों वाली है वो महाकाली है और वो महाकाल है वो ही महाकाल जब महागोरा बनता है तो किसके सहयोग से बनता है, है? महागौरी के सहयोग से महागोरा बनता है माना अव्यक्त वाणी में हम बच्चों को क्या आर्डर दिया क्या करो विजयमाला का आवाहन करो पूरी विजयमाला के मणकों का आवाहन कर लें ऐसा हो सकता है अरे वो तो छोटी छोटी शहद की मक्खियों की रानी है छोटी मक्खियों का शहद तो बहुत अच्छा माना जाता है क्या है आंखों में लगाएं तो चश्मा भी उतर जाए बड़ी मक्खियां भी होती हैं शहद की होती हैं कि नहीं है हाँ तो बताओ शहद की बड़ी मक्खियां कौन और छोटी मक्खियां कौन हैं जगदम्बा रुद्रमाला में बड़ी मक्खी और विजयलक्ष्मी जो विजय दिलाने वाली है वो है छोटी मक्खियों की रानी उसके लिए बोला शहद की मक्खियों की रानी निकलती है तो क्या होता है सारा मनारा उसके पीछे पीछे आ जाता है दो चार दिन लगाता है या एक बार में ही आ जाता है अभी रुद्रमाला के मणकों को तो 40 साल हो गए आते जा रहे हैं अभी भी आ रहे हैं कि नहीं अभी भी आ रहे हैं इतना लंबा टाइम और छोटी मक्खियों की जो रानी है वो जब उड़ेगी तो 16,000 इकट्ठी हो जाएंगी इसके लिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है वो आएगी मानो क्या हो गया अंत हो गया उससे पहले क्या होगा उसके आने से पहले जो बड़ी मक्खियों की रानी है रुद्रमाला का मणका जगदम्बा रूपी मणका जो रुद्रमाला में जगत पिता के साथ ऊपर दिखाया जाता है जगत पिता और जगदम्बा दोनों निराकार के साथ हैं या दूर हैं? है दोनों साथ हैं एक लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाने वाला और एक राइटियस का पार्ट बजाने वाला लेफ्ट हाथ से क्या किया जाता है, है? गंदगी साफ की जाती है और राइट से क्या किया जाता है है। हाँ, दान पुण्य का काम अच्छा काम किया जाता है। तो ये निमित्त बनाया हुआ है जगदम्बा को महाकाली के रूप में कि दुनिया में जितने भी असुर हैं रावण संप्रदाय, चाहे वो 500-700 करोड़ की दुनिया में हो, चाहे वो अपन को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले हो, और चाहे वो अपन को प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों की औलाद कहे जाने वाले रुद्रमाला के मणके हो, सब अंत में जाकर के माया के चंबे में फंस जाते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं, क्योंकि माया के साथ प्रकृति की ताकत मिक्स हो जाती है, जो दुनिया की ईश्वर को छोड़ करके प्रकृति पति को छोड़ करके मायापति को छोड़ करके लक्ष्मी पति को छोड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है कौन सी? प्रकृति। कैसी ताकत है? प्रकृष्ट रचना है, ऐसी प्रकृष्ट रचना है जो बाप के सब बच्चों को हम पकड़ के बैठ जाती है। कितने भी बड़े से बड़े सहयोगी बच्चे हों भुजाओं के रूप में, उन भुजाओं को काट काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा लेती है और बाप को बदनाम कर देती है। खुद क्या बनकर बैठ जाती है बच्चों के ऊपर? है राज करेगा खालसा, सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं के ऊपर, अष्टदेव में ही क्यों ना आने वाली हो, क्या उनके ऊपर भी बड़े थोड़े समय के लिए राज जरूर करेगी। लक्ष्मी को ऊपर राज करेगी या नहीं करेगी? है नहीं करेगी? करेगी नहीं करेगी? अरे लक्ष्मी वो आत्मा जो 84 के चक्र में एक आत्मा के सिवाय और किसी की इंद्रियों का संग का रंग नहीं लेती, वरुण शंभु न तो रहो कुंवारी, द्वैतवादी द्वापर युग में भी राक्षसी राज्य में भी जन्म लेने पर 63 जन्मों में या तो शंकर वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको वरण करती है स्त्री जन्म लेकर, अगर पुरुष का जन्म मिला तो कोई का वरण, कोई स्त्री का वरण नहीं करेगी, सन्यासी रहेगी। और अभी संगम युग में भी क्या है? सन्यासी। शूटिंग कर रही है या नहीं कर रही है? हैं? कर रही है। तो देखो 5000 वर्ष की सब प्रकार की शूटिंग मनुष्य आत्माओं के द्वारा अभी हो रही है। अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्माएं जो अच्छे से अच्छा पार्ट बजाती हैं शरीर के द्वारा, वाचा के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वो अभी पार्ट बजाए रही हैं और जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगी। और बुरे से बुरा पार्ट बजाने वाली भी अभी पार्ट बजा रही है। बुरे से बुरा पार्ट बजाने वालों का बाप बन करके जो पार्ट बजाती है, और अच्छे के अच्छा कर्म करने वालों का बाप बन करके पार्ट बजाती है, वो आत्मा भी अभी अभी पार्ट बजा रही है। वो अच्छे के अच्छे में भी बाप और बुरे से बुरे में भी बाप बनकर पार्ट बजाती है, और उसके सहयोगी जो 8 सहयोगी हैं जन्म जन्मांतर के, सहयोगी रूपी भुजाएं हैं, वो भी कैसी है जो अव्यक्त वाणी में बोला, 100 की माला फिर भी बन जाती है, 100 ब्राह्मणों का संगठन फिर भी बन जाता है, लेकिन 8 बहुत ऊपर और बहुत नीचे होते हैं। अभी अभी ऊपर और अभी अभी नीचे, उनका बाप कौन जो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होता है, अभी अभी अच्छे के अच्छा पार्ट और अभी अभी एकदम डाउन, एकदम गड्ढे में। भक्त भक्त लोग बोलते भी हैं गड्ढे वाले की जय,
वाह भाई।
चोटी वाले की जय नहीं बोलेंगे, भक्त लोग क्या बोलते हैं, गड्ढे वाले की जय। क्यों ये पार्षद की भक्त लोग क्यों करते हैं? अरे भक्त खुद गड्ढे में गिरते हैं तो गड्ढे वाले की जय बोलेंगे या ऊपर चढ़ने वालों की जय बोलेंगे, है? तो ये ड्रामा बना हुआ है कि प्रकृति के पास जो 5 तत्वों की ताकत है, 5 तत्व से बने हुए प्रकृतिपति के जो शरीर है, उस शरीर के सत्य की बड़े से बड़ी पावर लंबे समय तक उस जगत माता ने धारण की है। की है प्रैक्टिकल में या नहीं? इतनी शक्ति, 5 तत्वों से बने हुए शरीर की शक्ति कोई और आत्मा धारण कर पाती है? कर पाती है? नहीं धारण कर पाती, और जगत माता धारण करती है। इतनी ताकत है 5 तत्वों के संघात प्रकृति में। किस दुनिया के जो भी रावण संप्रदाय हैं, कलयुग के अंत में सारी दुनिया क्या बन जाती है, कौन सा संप्रदाय? सब रावण संप्रदाय बन जाते, राम ही कोई रावण बन जाता है, तो कौन बचेगा? बाप ही रावण बन गया तो सारे बच्चे रावण बन गए। लेकिन बच्चे फिर गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? अरे बाप रावण बना तो बच्चे ना फॉलो करें, फॉलो कदा नहीं करें, हाँ जल्दी बोले करें। और ब्रह्मा मुख से बाप क्या बोलते हैं? सुप्रीम सोल बाप, सुप्रीम सोल बाप बोलते हैं कि शंकर को फॉलो नहीं करना है, और बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ? कर्म इंद्रियों से कर्म करने में जो बाप बताते हैं बड़े से बड़ा पाप कर्म है काम इंद्रिय का, वो बच्चे काम इंद्रिय का पाप कर्म करते हैं या नहीं करते हैं, उस कर्म के समय अपनी मनमानी करते हैं या नहीं करते हैं। पुरुष हैं तब तो है ही दुर्योधन दुशासन, वो तो मजबूर हैं, वो तो करेंगे ही। इस पुरुष जन्म में जैसे कि वो उनका वर्षा है, सुख का वर्षा है, लेकिन स्त्रियों में भी बता दिया कन्याओं माताओं में भी कोई सुपनखा पूतना होती है, क्या क्या होती है सुपनखा, कौन थी रावण की बहनी, दुष्ट हृदय अति दारुण श्रेणी, इतनी दुष्टता भरी हुई थी, ऐसे ही जंगल में घूमती फिरती रहती। अरे कन्या है तो बाप या बड़े भाई के घर में रहना चाहिए ना, सारी दुनिया में घूमी घूमी क्यों फिरती है। लेकिन वो नाम ही है सुपनखा, क्या करती थी है, खुद ही आंख लड़ाने जाती थी राम लक्ष्मण के सामने और उनके ना कर देने पर मान गई, नहीं मानती थी, बार बार तंग करती थी, तो राम ने इशारा दे दिया, किसको है लक्ष्मण को इशारा दे दिया, किसी नाक काट दो है, तो उसकी नाक कट गई, नाक कट गई तो रावण के दरबार में जाकर के रो रो के गुहार लगाई। अरे ये वनवासी, इन्होंने मेरी नाक काट दी, अपनी गलती नहीं बताई, क्या नाक काटने की गलती बता दी। तो बाबा ने बोला है इसे भारत का नाम बदनाम करने वाली कौन है, हैं? सुपनखा पूतना तो ठीक, लेकिन बोला है वैश्याएं कौन, भारत का नाम बदनाम करने वाली कौन, वैश्याएं, विशेष कर्म करने वाली। वो उनकी विषय वासना की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्या करती है, है? दुनिया में जो रावण संप्रदाय फैला हुआ है वहां जाकर मीडिया के सामने रेडियो स्टेशन में जाकर के इंटरनेट में जाकर के खूब ग्लानी करती है और भारत का नाम बदनाम कर देती है, उनका साथ बच्चियों का साथ कौन देते होंगे, लंपट कीचक जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, मुरली में उनका नाम दिया है कीचक, कीच माने कीचक का माने करने वाले, क्या करते हैं है? जैसे भैंसा है ना, गेंडा होता है ना, कहां आनंद से लूटता है, है कीचड़ में बड़ा आनंद लेता है। ऐसा कीचड़ माने गंदगी का माने करने वाले, गंदगी फैलाने वालों को साथ लेती है और खूब दुनिया में गंदगी ग्लानी की फैलाती है। और उनकी मुखिया कौन हुई? उनमें सबसे मुख्य पार्ट बजाने वाली कौन हुई? अरे काले कर्म करने वालों में मुखिया कौन? महाकाली। ये भारत का नाम बदनाम करने वाली वैश्याएं महाकाली की भुजाएं बनती हैं, जट से भुजाएं बन जाती है। परमात्मा बाम फूटे और फट से उनको मौका मिल जाता है। तो महाकाली की ताकत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाती है। उनमें भी नंबरवार होती है। सब एक जैसी नहीं हो सकती। भारत के राजाएं बड़े से बड़े व्यभिचारी बने दुनिया में, दुनिया की हिस्ट्री में। तो वो राजा बनने वाली आत्माएं कौन सी माला में होती है? रुद्रमाला में होती है। रुद्रमाला में सब पुरुष होते हैं या फीमेल भी होते हैं? है? स्वभाव संस्कार से भल सब पुरुष हैं। जो पुरुष परम पुरुष का पार्ट बजाने वाला, जो मनुष्य आत्माओं का बाप है, जिसे शास्त्रों में शंकर कहा गया। कहा गया कि नहीं? रुद्रमाला का मुखिया है, बिचौलिया है या लास्टमण का है? मुखिया है, उसी को फॉलो करने वाले हैं। स्त्री चोला है तो फिर भी गनीमत, और पुरुष चोले में है तब तो वो है ही दुर्योधन दुशासन। उनकी बात छोड़ दो, जो राजाएं जन्म जन्मांतर की आदत धारण कर ली विविचारी बनने की, आत्मा ने विविचार के संस्कार आ गए, स्वभाव पड़ गया, वो आत्माएं अगले जन्मों में जब स्त्री चोला लेती हैं तो विविचार का स्वभाव स्त्री चोले में आएगा या नहीं आएगा? हैं? आता है। और उनमें भांति भांति के हैं, कोई भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाले। भारतीय धर्मों की विशेषता है ब्रह्मचर्य को फिर भी महत्व देते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज। ये भारतीय धर्म है या विदेशी? भारतीय धर्मों से कन्वर्ट होकर आई हुई आत्माएं हैं। रुद्रमाला में भी हैं बीज रूप में, और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले भी हैं। हर धर्म से आए हुए हैं। सूर्यवंशी गिने चुने हैं, बाकी सब दूसरे धर्म वंशों से आए हैं। हाँ, कोई भारतीय धर्मों से आए हैं, कोई विदेशी धर्मों से कन्वर्ट होकर आए। तो जैसे जैसे जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार हैं, संघ का रंग लिया है, वैसा ही पार्ट बजाती है। तो वो आत्माएं जो भारत का नाम बदनाम करने वाली हैं, परमात्मा बांब फोड़ने वाले लंपटों के साथ मिलकर के एक हो जाती हैं। सारी दुनिया में बाप की ग्लानि फैलाती हैं। वो आत्माएं बड़ी सहयोगी बन जाती हैं परमात्मा बांब की आवाज फैलाने में। कौन सी माला के मणके होते हैं? है? कौन सी माला के मणके?
रुद्रमाला
के मणके। कोई कम विकारी, कोई ज्यादा विकारी। तो माया की गिरफ्त में सारे ही आ जाते हैं या कोई बच जाता है? माया किसी को छोड़ती नहीं। तो प्रकृति अपना सब कुछ दिखाएगी।
क्या?
प्रकृति माता के कंट्रोल में जो जो भी आ जाएंगे, सबकी ताकत लड़ाई में झोंकेगी या नहीं झोंकेगी, ये सारी माया और प्रकृति की सेना हो गई। राजाएं क्या करते हैं? खुद आगे होते हैं या सेना को आगे कर देते हैं? सेना को आगे कर देते हैं, खुद पीछे रहेंगे। तो जो उस प्रकृति को आर्डर मिला है, क्या अच्छा आर्डर मिला है प्रकृति को? है? अरे प्रकृति रूपी जो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है, महाकाली का पार्ट बजाती है तमोप्रधान होने पर, उसको क्या आर्डर मिलता है? हैं? जो मुरली में बोला है ब्रह्म वाक्य, शंकर की जगह पर त्रिमूर्ति के चित्र में जगदम्बा को रखा होता तो समझाने में बड़ा सहज हो जाता। क्या मतलब? कि जगदम्बा वाली आत्मा जब तमो प्रधान बनती है, उसके मस्तक पर ब्रह्मा अधूरा ज्ञान चंद्रमा प्रवेश करके वो महाकाल का पार्ट बजाता है तो क्या होता है? है? सांप को कंट्रोल में करिए। समझ में नहीं आ रहा है? उसको ऑर्डर मिला हुआ है उस बड़े से बड़ी माता को, असुर संहार नहीं बनना है। क्या विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूपिणी बनना है, महाकाली बनना है, ज्वाला रूपिणी बनना है? क्या तो बनेगी कि ये नहीं बनेगी? और सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है कि कोई रह जाता है? हैं? इस समय हालात क्या हैं? इस समय दुनिया में क्या हालात हैं? 500-700 करोड़ की दुनिया में क्या हालात हैं? ब्रह्मा कुमार जो कुमारी अपन को कहते हैं, हम अम्मा कुमार हैं, उनके क्या हालात हैं? और जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उनका क्या हाल है? सब रावण संप्रदाय बने हुए हैं या शिव को पवित्र रहो, योगी बनो, इस वाक्य को फॉलो करने वाले हैं? अमृत वेले क्या कहते हैं, क्या करते हैं? अमृत वेले का रिजल्ट क्या है? जिस अमृत वेले का प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है, और अभी तो सच्चा सच्चा अमृत वेला चल रहा है। क्या तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो 40 से 50 वर्ष के अंदर? ये पक्का पक्का अमृत वेले का टाइम हुआ या नहीं हुआ, या 20 साल पड़े हैं?
अमृत वेला का टाइम
है, अमृत वेले का टाइम है। तो अमृत वेले में अभी क्या है, 80 साल हो गए, अभी तो 10 साल ही बचे हैं। तो हालात क्या कहते हैं? हैं? देवहन में ज्यादा रहते हैं या आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहते हैं? मनन चिंतन मंथन में ज्ञान में बुद्धि ज्यादा चलती है या दुनियावी बुद्धि ज्यादा चलती है? तू तेरा मैं मेरा इस चक्कर में तो नहीं रहते हैं? चलो बच्चों की बात छोड़ दो, परिवार में जो सबसे जास्ती शक्तिशाली होती है माँ बच्चों के लिए, बच्चों के लिए माँ ही शक्तिशाली है ना, तो वो असुर संगारणी उसको टाइटल मिला हुआ है, तो अपना काम करेगी या नहीं करेगी? उसको जो ऑर्डर मिला है वो तो करेगी, ऐसे नहीं है कि नहीं करेगी, यहां तक भी करेगी कि बाप के जो सहयोगी रूपी भुजाएं बने हैं नंबर वार बच्चे, उन भुजाओं को उन सहयोगियों को भी कट कर देगी बाप से, अनिश्चय बुद्धि बना देगी, और बनाकर क्या करेगी? अपनी कमर की लज्जा बचा लेगी, और बाप तो चुपचाप बैठे, क्या चुपचाप बैठेगा या
चुपचाप बैठेगी?
कुछ गड़बड़ करेगा?
चुपचाप, काम तो बाप को हो रहा,
बाप तो चुपचाप बैठेगा, ड्रामाबाजी देखेगा। बाबा यही बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हो, क्या बाप का कोई भी बच्चा हो, बच्चा कौन, बच्चा किसे कहें? अरे बच्ची नहीं, बच्चा किनको कहें? बच्चा हैं
जो आत्मा स्थिति में,
अरे वो पहचान बताओ,
बाप को पहचाना है।
हाँ, बाप को पहचानने वाला कोई भी बच्चा हो, सन 76 से लेकर के अब तक भी 40 साल हो गए, क्या एडवांस बच्चों में, बाप के बच्चों में 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था ना, कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो जो राम बाप को फॉलो करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों में कोई कितना भी पुराना हो और कितना भी नया हो, इन 40 साल के अंदर वो 20 साल का इंतजार बिल्कुल न करे। अरे तो कितने का करे, कितने का करे? कितने का करे है? अरे पूरी राजधानी कब स्थापन हो जाएगी? पूरी राजधानी में राजा ही चाहिए, रानी ही चाहिए, राज्याधिकारी ही चाहिए, बड़े बड़े फर्स्ट क्लास दास दासी भी चाहिए, या फोर्थ क्लास दास दासी भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए,
है? बढ़िया बढ़िया चाहिए,
बढ़िया बढ़िया चाहिए, और प्रजा नहीं चाहिए,
यही बढ़िया चाहिए,
दास दासी नहीं चाहिए,
बढ़िया बढ़िया चाहिए,
तो कैसे बढ़िया बढ़िया चाहिए? अरे सब तरह की चाहिए ना राजधानी में, तो सब तरह के में बच्चे आने के लिए इनकार कर रहे हैं कि ईश्वर बाप आकर के दई सृष्टि में नई दुनिया की जो भी राजधानी स्थापन करता है, उस राजधानी में सब प्रकार के बच्चों के बीच मैं अपना नंबर नहीं लेना चाहता। ऐसा कोई बच्चा है? हाँ? तो कितने साल का इंतजार करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 साल का इंतजार करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। 10 साल के अंदर इंतजार करना पक्का कर लिया या इंतजाम करना पक्का कर लिया? हाँ? इंतजाम करना है। इंतजार करने वाला नहीं बनना है, क्या करना है? इंतजाम करना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। बाप का ये जो संदेश है, खास संदेश बताया, लास्ट संदेश बताया गुलजार दादी के द्वारा, इसको सारी दुनिया में रिले करना है। यहां तक कि लंदन में जो जनक बच्ची बैठी हुई है, विदेश के जो भी बच्चे हैं, डबल विदेशी हो, सिंगल विदेशी हो, हद में हो, बेहद में हो, सब बच्चों को संदेश देने वालों में मुख्य कार्य करने वाली, उसके एक बोल से बड़ा काम हो सकता है। उस बच्ची तक भी ये संदेश पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना? पहुंचाना है, पूछा है, इसलिए जहां तक आवाज पहुंचा सकते हैं वहां तक बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। क्या कहा? बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। जो बाप का तन गुप्त रूप में है, किसी के सामने नहीं आना चाहिए, सिर्फ आवाज आवाज पहुंचनी चाहिए दुनिया में। नहीं समझ में आया? आवाज पहुंचेगी, ये अंदर से निश्चय है। पूछा, आवाज पहुंचेगी माने ब्रह्मा बाबा को? कोई कोई बच्चों के ऊपर निश्चय नहीं है तो फिर पूछ रहे हैं, आवाज पहुंचेगी? एक ने बोला पहुंचेगी, फिर दोबारा पूछा, पहुंचेगी? पहुंचेगी ना,
पहुंचेगी।
हाँ, क्योंकि बाप की आवाज फैलाने के बजाय आज बच्चों में खुद का ज्ञान बहुत चल गया है, खुद को बाप से भी बड़ा ज्ञानी समझते हैं, तो अपनी आवाज पहुंचाएंगे या बाप का आवाज पहुंचाएंगे? जिनमें देवान होगा अपना ज्ञान सुनाते होंगे, हम ही बाप हैं, जो भक्ति मार्ग में भी गुरु बनकर के बैठे होंगे, यहाँ शूटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? शिवोहम। शंकराचार्य ने क्या किया? धर्मपिता है ना, क्या किया? शिवोहम माने दुनिया में और कोई शिव अलग से नहीं है, हम ही शिव हैं, हम ही गीता के अंदाता हैं। तो जिनको बड़े या छोटे देहधारी धर्मगुरु बनने की शूटिंग करनी है, उनको तो करनी ही है, है? नहीं करेंगे? करेंगे ही। वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले हैं, गोद माने कुखवंशावली हैं, या ब्रह्मा के मुख से निकली हुई शिव की वाणी को मानने वाले हैं?
गोद में पलने वाले
हैं,
ब्रह्मा की गोद का क्या?
कुखवंशावली हैं। ब्रह्मा कुमारियों में जड़ के रूप में आधार मूर्त में भी कुखवंशावली हैं, और एडवांस पार्टी में रुद्रमाला में बीज रूप में भी ब्रह्मा की कुखवंशावली हैं। ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों पर ज्यादा मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, इसलिए बाप को पहचानते ही नहीं है, बाप क्या है। तो बाबा यही बताना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा 20 साल का इंतजार न करे। कौन कौन न करे? हैं? कोई भी बच्चा, बच्चा बच्चा मैं है, बाप का बच्चा कौन? जिसने बाप को पहचान लिया, मान लिया, जान करके बाप की पढ़ाई को पढ़ भी रहा है। एक बाप से पढ़ता है जो बोला है ब्रह्म वाक्य में, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। वो व्यभिचारी ज्ञान वाली आत्माएं ज्यादा जन्मों तक व्यभिचारी धर्मों में रहेंगी, भले जीवन रहते कन्वर्ट हों या बीज रूप आत्माओं की तरह जीवन खत्म हो जाए, फिर अगले जीवन में विविचारी धर्मों में जाके जन्म लो करके कन्वर्ट हो, वो कन्वर्ट जरूर होंगी। तो 20 साल का इंतजार करने वालों बच्चों में नहीं रहना चाहिए, वो देह अभिमानी बच्चे हैं जो 20 साल का इंतजार करेंगे कि 20 साल में दुनिया का विनाश होगा। देही अभिमानी स्थिति रहे। स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्माभिमानी। नहीं तो क्या होता है? बताया, निशानी बताई, लोहे के पंजरे से निकलते हैं, लोहे का पिंजरा माने लौकिक दुनिया के संबंधियों के बंधन से बुद्धि भले मुक्त हो जाती है,
लेकिन कहाँ फंस जाते हैं?
सोने की जंजीरों में फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते? जो ब्राह्मणों की दुनिया का संगठन बना है, उन ब्राह्मणों की दुनिया में देह के लगाव झुकाव में फंस जाते हैं। वही बुद्धि बार बार भागती है, उन्हीं का संग करना चाहते हैं, बाप को भूल जाते हैं। उन्हीं की बार बार याद आती है, बाप की याद नहीं आती है। लोहे के पिंजरे से निकलते हैं, सोने के पिंजरे में बंध जाते हैं। तो क्या करना है? मान लो पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, पूरे परिवार के सभी भांति ज्ञान में चलते हैं, तो अपने को देखना है बुद्धि ज्यादा कहाँ फंसी रहती है, कहाँ फंसी रहती है, बेटे में फंसी रहती है या बेटी में फंसी रहती है, माता में फंसी रहती है या बेटे की बहू में फंसी रहती है। बहुत तो ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं समझते कि अभी बंधन तोड़ने का टाइम चल रहा है या नए बंधन जोड़ने का टाइम चल रहा है, और तोड़ने के टाइम पर कोई नए जोड़ता रहे। भले बच्चा ज्ञान में चलता है, सब जानते हैं, हाँ ज्ञान में चलता है, फिर भी बच्चे की शादी आई, लड़की बड़ी सुंदर है, घर बड़ा धनाढ्य है, आह लट्टू हो जाते हैं। तो सोने के पिंजरे में गए या नहीं गए? इन पिंजरों से भी मुक्त होकर के फरिश्ता बन करके, क्योंकि फरिश्तों का इस दुनिया में कोई के साथ कोई देह का रिश्ता नहीं होता। मेरी बहू, मेरा दामाद, मेरा ये, मेरा वो, अब लास्ट टाइम है, महामृत्यु साहब के सामने खड़ी है। क्या सामान्य मृत्यु तो जन्म जन्मांतर होती रही, तो क्या होता रहा? अंत मते सोगते होती रही, अभी भी क्या होगा? अभी तो महामृत्यु है, महामृत्यु सामने खड़ी है, आई के आई। तो क्या करना है अब महामृत्यु के समय अंत में क्या करना है?
एक बात तो एक बार के बाप को ही
आता है। अरे हम तुम्हें हे रहे, तुम नहीं हे रहो, ऐसे क्यों भाई अधीर? तनिक तुम देखो मेरी ओर। हाँ, क्या बात बताई? अभी तोड़ने का संबंध का टाइम चल रहा है, अभी जोड़ने का टाइम नहीं। नए संबंध जोड़ना नहीं है। किसके साथ जोड़ना है? एक बाप दूसरा न कोई। अब नहीं तो कब नहीं? 80 साल से ये बोलते चले आए, अब नहीं तो कब नहीं। अभी ये लास्ट संदेश है। क्या इसके बाद फिर बच्चों के लिए कोई संदेश? और दुनिया के लिए भी कोई संदेश नहीं होगा। ओम शांति।